आगे सबक देखिए भाई। किताबुल मफकूद, इदा गाबर रजुल फलम युअरफ लहू मौज़िउन वला युअलमु अहय्युन हुवा अम्मैतुन नसबल काज़ी मन यहफ़ज़ु मा लहू वयकूमु अलैहि वयस्तौफी हक़्क़हू لأن القاضي نصب ناظرا لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود بهذه الصفة وصار كالصبي والمجنون। भाई गुज़श्ता सबक में हमने किताबुल इबाक पढ़ी। मैंने आपको बतलाया था कि अबका यअबिकु इबाकन का माना है भाग जाना, और ये बिलखुसूस गुलाम के भाग जाने के लिए इस्तेमाल होता है। भाई आपने पढ़ा कि ये जो अब्द आबिक है, ये जो भागा हुआ गुलाम है, ये भी लुक्ता के दर्जे में है। और जैसे लुक्ता को कोई शख्स उठाता है तो उसमें दोनों एहतमाल हैं। हो सकता है वो अपने लिए उठा रहा हो तो फिर ये गसब के दर्जे में है, और अगर वो मालिक को पहुंचाने के लिए उठा रहा है तो फिर वो अमानत के हुक्म में है। तो जैसे वहां लुक्ता के अंदर अगर मालिक के लिए उठाए तो वहां गवाह बनाना चाहिए तो फिर वो अमानत के हुक्म में होगा। इसी तरह किसी ने अगर किसी का कोई गुलाम भाग गया है और उसको कोई शख्स पकड़ ले तो उसको भी गवाह बनाने चाहिए, और फिर वो इस गुलाम को हाकिम के पास या उसके नाइब के पास या काजी के पास ले जाए, इसलिए क्योंकि वो खुद तो इस गुलाम की हिफाजत करने पर कादिर नहीं है। चुनांचे काजी इस गुलाम को जेल में डाल देगा और फिर इंतजाम किया जाएगा आका तक इस भागे हुए गुलाम को पहुंचाने का। और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि जो शख्स भी भागा हुआ गुलाम आका के पास वापस लेकर आए तो आका को उसे जुअल देना पड़ेगा, यानी खर्चा और उजरत जो है वो उसे देना पड़ेगी। अगर वो गुलाम को 3 दिन या इससे ज्यादा मसाफत से लेकर आया है तो उसका जुअल 40 दिरहम होगा, और अगर उससे कम मसाफत से लेकर आया है तो उसी के हिसाब से होगा। या तो दोनों आपस में सुलह कर लें, या काजी के राय के मुताबिक अमल कर लें, या 40 को तकसीम कर दिया जाए 3 दिनों पर भाई, और उस हिसाब से जितने दिन की मसाफत से लाया है उतना खर्चा उसको दे दिया जाए। और अगर भागे हुए गुलाम की कीमत 40 दिरहम से कम है तो फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम की कीमत से 1 दिरहम कम जो है वो जौल दे दिया जाएगा, ताकि आका के लिए भी फायदा साबित हो जाए। मसलन गुलाम अगर 35 दिरहम का है और आका को 40 दिरहम देने पर मजबूर किया जाए तो इसमें तो आका का नुकसान है, तो लिहाजा गुलाम की कीमत से 1 दिरहम कम जो है वो जौल अदा कर दिया जाएगा वापस लाने वाले को। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मिकदार नस से साबित है, लिहाजा इसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। तो ज्यादती तो बिल्कुल ही जायज नहीं है, अलबत्ता कमी के अंदर अगर दोनों आपस में राजी हो जाते हैं, सुलह कर लेते हैं, तो कमी की जा सकती है, और इसको यूं शुमार किया जाएगा जैसे वो वापस लाने वाले ने कुछ हिस्सा माफ कर दिया है। और अगर आका के घर वालों में से कोई उस गुलाम को लेकर आता है, यानी उसकी औलाद ले आती है, या उसका बाप ले आता है, या मियां बीवी में से कोई एक जो है वो गुलाम को वापस लेकर आया है, तो फिर इस सूरत में अगर औलाद लाई है या मियां बीवी में से कोई एक गुलाम को वापस लेकर आया है तो उसके लिए जौल नहीं होगा। और अगर उस आका का बाप जो है वो उस गुलाम को लेकर आया है, तो अगर इसका बाप अगर इसी के जेरे कफालत है तो फिर इस सूरत में बाप के लिए भी जौल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि किसी शख्स का गुलाम जब भाग जाए तो आदतन अपने अहलो अयाल के जरिए ही उसे तलाश किया जाता है और उसे वापस लाया जाता है। और अगर वो शख्स जो गुलाम को वापस ला रहा था, अगर उससे गुलाम भाग गया या उसके पास गुलाम मर गया तो फिर उस पर कोई जमान वगैरह नहीं आएगा। अगर उसने इस गुलाम को पकड़ते हुए इस पर गवाह बनाए थे कि ये मैं आका के लिए पकड़ रहा हूं, क्योंकि इस सूरत में ये गुलाम अमानत के दर्जे में है भाई। और साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स भागे हुए गुलाम को आका के पास लाता है और आका उस गुलाम पर कब्जा करने से पहले ही उसको आजाद कर देता है, तो तो ये एताक भी हुक्मन कब्जा शुमार होगा और यूं समझा जाएगा जैसे आका ने पहले गुलाम पर कब्जा किया और फिर उसे आजाद कर दिया, लिहाजा इस सूरत में भी आका को जौल देना पड़ेगा। ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स कोई गुलाम खरीदे और वो मुश्तरी उस गुलाम पर कब्जा करने से पहले ही उसको आजाद कर दे तो वो गुलाम आजाद हो जाएगा और हुक्मन मुश्तरी का कब्जा शुमार किया जाएगा। यूं समझा जाएगा जैसे मुश्तरी ने बेअ के बाद गुलाम पर कब्जा किया और फिर उसे आजाद कर दिया। इसी तरह अगर आका ने गुलाम पर कब्जा करने से पहले उसी वापस लाने वाले के हाथ उसे बेच दिया तो इस सूरत में भी हुक्मन आका का कब्जा शुमार होगा और उसे जौल देना पड़ेगा। भाई इस पर यहां इश्काल होता है कि हदीस के अंदर तो ऐसी चीज को बेचने से मना किया गया है जिस पर अभी इंसान ने कब्जा ना किया हो, तो आका ने अभी अपने गुलाम पर कब्जा नहीं किया और उसी लाने वाले के हाथ बेच रहा है, ये तो उस नहीं के तहत आ गया। तो उसका जवाब दिया कि नहीं, ये जो गुलाम को वापस लाया है इसका गुलाम को आका के सुपुर्द करना ये हकीकतन बेअ नहीं बल्कि बाज एतबार से ये बेअ जैसा है, लिहाजा ये उस नहीं के तहत दाखिल नहीं है। भाई और साहिब हिदायत ने बतलाया कि तरफैन के नजदीक इस भागे हुए गुलाम को जब कोई शख्स पकड़े तो वहां पर भी गवाह बनाना जरूरी है। अगर इसने उस गुलाम को पकड़ते हुए गवाह नहीं बनाए तो यूं समझा जाएगा इसने गुलाम को अपने लिए पकड़ा है कि खुद इससे खिदमत वगैरह लेता रहेगा, लिहाजा यह शख्स अगर गुलाम को वापस लाएगा तो इसके लिए जौल नहीं होगा क्योंकि ये जो गुलाम को वापस ला रहा है सिर्फ अपने से अब जमान को साकित करना चाहता है क्योंकि अगर आका को खबर मिल गई तो इस पर जमान आएगा। भाई और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि अगर वो भागा हुआ गुलाम जो है वो उस आका ने किसी के पास रहन रखवाया था तो वो जो खर्चा है वो मुर्तहिन के जिम्मे आएगा। मैंने आपको बतलाया था कि रहन मजमून होता है बिकदरी दैन, भाई दैन के बकदर मजमून होता है रहन और दैन से जो जायद कीमत है वो अमानत के हुक्म में होती है, लिहाजा वो जो गुलाम जिसे रहन रखवाया है अगर उसकी कीमत दैन के बराबर है या दैन से कम है तो सारा ही गुलाम मजमून है तो सारा खर्चा उसी मुर्तहिन पर आएगा, ये जो जुअल है भाई। और अगर इस गुलाम की कीमत दैन से ज्यादा है तो जितना हिस्सा अमानत है गुलाम का वो खर्चा फिर राहिन पर आएगा, ये गुलाम जिसकी कीमत दैन से ज्यादा है और इसको रहन रखवाया गया और मुर्तहिन से ये भाग गया तो जौल जो है उसका कुछ हिस्सा मुर्तहिन पर आएगा और कुछ हिस्सा राहिन पर आएगा। मसलन एक शख्स ने 10 लाख रुपए देन लिया और उसके बदले अपना 20 लाख रुपए वाला गुलाम बतौर रहन के रखवा दिया तो ये गुलाम निसफ जो है ये तो मजमून है और निसफ उस मुर्तहिन के पास अमानत है, फिर मुर्तहिन से ये गुलाम भाग गया और कोई इसको वापस लेकर आया सफर की मसाफत से तो अब ये जो 40 दिरहम हैं ये वो मजमून और अमानत हिस्से पर तकसीम किए जाएंगे तो निसफ हिस्सा गुलाम का मजमून था तो निसफ जौल मुर्तहिन पर आएगा और निसफ हिस्सा अमानत था तो वो इस गुलाम के असल मालिक यानी राहिन पर आएगा तो निसफ निसफ जौल दोनों को अदा करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपने उस आबिक गुलाम के बारे में पढ़ा जो मदयून था, मसलन आका ने अपने गुलाम को तिजारत की इजाजत दे दी तो ये अब्द माजून लहू जो है इस पर तिजारत में देन आ गया तो अब इसके अंदर याद रखो आका को इख्तियार होता है चाहे तो वो इस गुलाम को अपने पास ही रख ले और सारों के दुयून अदा कर दे और चाहे तो इस गुलाम को बेच दे और फिर उसके समन के जरिए दुयून अदा कर दे, ये आका का इख्तियार है। तो अब्द मदयून अगर आका के पास से भाग गया और फिर उसको कोई पकड़ कर ले आया तो इसका जौल जो है अगर आका इस गुलाम को अपने पास रखता है तो जौल भी आका को देना पड़ेगा और अगर आका ये गुलाम बेचकर देन अदा करना चाहता है तो जौल भी उसी गुलाम के समन में से वसूल किए जाएंगे, पहले समन में से जौल वसूल कर लिया जाएगा और फिर बाकी जो समन बचेंगे वो जो कर्जखा हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिए जाएंगे भाई। इसी तरह अगर कोई गुलाम जिनायत कर ले तो आप जानते हैं कि उसके अंदर भी आका को इख्तियार होता है, या तो वो जिनायत का जमान जो है वो आका अदा कर दे और गुलाम को अपने पास ही रख ले, और चाहे तो वो जो जिनायत के अवलिया हैं ये गुलाम उन्हीं के हवाले कर दे। तो ये जिनायत वाला गुलाम अगर भाग गया और फिर इसे कोई पकड़ कर ले आया, तो अगर आका इस गुलाम को खुद रखकर जिनायत का जमान अदा करता है तो फिर जुअल भी आका ही को देना पड़ेगा, और अगर ये आका जो है ये जिनायत के अंदर इस गुलाम ही को उस जिनायत वालों के सुपुर्द करता है तो जुअल भी उन्हीं के जिम्मे होगा। इसी तरह साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर आका ने अपना गुलाम किसी को तोहफे के तौर पर दे दिया और फिर उस महूब लहू से ये गुलाम भाग गया और फिर ये गुलाम वापस लाया गया, तो इस गुलाम का जो जौल है वो महूब लहू ही को देना पड़ेगा, चाहे बाद में आका इस गुलाम के अंदर रुजू ही क्यों ना कर ले, फिर भी जो जौल है वो महूब लहू पर आएगा। इस पर इश्काल होता है कि जब आका इस गुलाम को वापस लेगा महूब लहू से तो गुलाम का नफा तो असल में आका को हासिल हुआ कि उसने गुलाम वापस ले लिया। तो उसका जवाब दिया कि यहां दो चीजें हैं, एक है उस गुलाम का वापस लाना और फिर उस गुलाम के वापस लाने के बाद महूब लहू का उसके अंदर अपने तसर्रुफ को छोड़ देना, क्योंकि गुलाम को वापस लाने के बाद अगर महूब लहू इस गुलाम को बेच देता या किसी को तोहफे के तौर पर दे देता तो फिर आका वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि महूब लहू की मिल्कियत खत्म हो गई थी। तवज्जो है, मैंने आपको बताया था कि हिबा के अंदर वाहिब रुजू कर सकता है जब तक महूब लहू की उस हिबा पर मिल्कियत बाकी है, तो लिहाजा यहां पर भी जब गुलाम वापस लाया गया तो महूब लहू को इख्तियार था, वो इस गुलाम को बेच सकता था, किसी को तोहफा दे सकता था, लेकिन उसने इस गुलाम ने अपना तसर्रुफ नहीं किया, अपना तसर्रुफ छोड़ दिया, तो आका को जो गुलाम का हिबा वापस लेने का फायदा हुआ है वो इस महूब लहू के अपने तसर्रुफ को छोड़ने की वजह से हासिल हुआ है, लिहाजा इसी की तरफ निस्बत की जाएगी आका के फायदे की, कि ये जो महूब लहू ने अपना तसर्रुफ छोड़ा है उसकी वजह से आका को फायदा हुआ है, गुलाम को वापस लाने की वजह से वो जो फायदा है उसकी निस्बत महूब लहू की तरफ ही होगी, तो वो जौल महूब लहू से ही लिया जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि अगर कोई किसी बच्चे का गुलाम था वो भाग गया तो जौल भी बच्चे के माल में से अदा किया जाएगा, और अगर बच्चे का कोई वसी है कोई निगरान है और ये गुलाम वगैरह उसके कब्जे में है तो इस सूरत में अगर ये गुलाम भाग गया और खुद यही वसी उसको पकड़ कर लाया तो वसी के लिए इसका जौल नहीं होगा, क्योंकि वसी ही तो इसका निगरान है, क्योंकि जो भी गुलाम को लाएगा वो वसी के हवाले करेगा, तो इस सूरत में गोया गुलाम जिसको वापस किया जाएगा वो भी है वसी और वापस लाने वाला भी है वसी, तो अगर वसी के लिए जौल लाजिम किया जाए ये तो ऐसे ही होगा जैसे वसी अपने लिए अपने ही ऊपर जौल वाजिब कर रहा है। बात समझ में आ गई, लिहाजा इस वसी को जौल नहीं मिलेगा। अब आइए आज के सबक पर। किताबुल मफकूद, मफकूद भाई फकदा यफकिदु फकदन का माना है किसी चीज का गुम हो जाना, किसी चीज का खो देना, तो इसको फकद कहते हैं। तो मफकूद का माना हुआ गुमशुदा, वो शख्स जो गुम हो गया है जिसका पता नहीं चल रहा कि कहां चला गया। तो कहते हैं किताबुल मफकूद, ये किताब है मफकूद के बयान में। इदा गाबर रजुलु फलम युअरफ लहू मौज़िउन वला युअलमु अहयुन हुवा अम्मैतुन। यहां से मफकूद की तारीफ कर रहे हैं कि मफकूद कहते किसे हैं। याद रखो मफकूद वो आदमी है जो गायब हो गया है, अब ये भी नहीं पता कि वो कहां चला गया है और ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मुर्दा है, तो इस शख्स को मफकूद कहते हैं। अब इसकी बीवी का क्या हुक्म है, वो कब तक इंतजार करे इसका और कब उसे आगे निकाह की इजाजत होगी, और इसके माल का क्या हुक्म है, कब तक इसके माल को रोका जाए और कब इसके माल को फिर इसके वारिसों की तरफ मुंतकिल किया जाए। तो ये सारे अहकाम साहिब हिदाया यहां बयान फरमाएंगे। तो मफकूत वो आदमी है जो गायब हो गया, वो कहां चला गया जगह का भी पता नहीं, और वो जिंदा है या मुर्दा है ये भी इलाम नहीं है। तो आपको बतलाएंगे ऐसा आदमी हो तो काजी उसके माल के लिए कोई निगरान मुकरर कर देगा। काजी किसी आदमी को निगरान मुकरर कर देगा जो उसके माल की हिफाजत करेगा और उसकी निगरानी करेगा और उसके हुकूक वसूल करेगा। भाई मसलन किसी से दैन वसूल करना था इस आदमी ने, तो अब ये जो निगरान है ये इसका दैन वसूल करेगा। नीज इसकी आमदनी आ रही है भाई, इसके खेत हैं, फसलें हैं, तो ये सारी चीजों की वो निगरानी करेगा भाई। तो कहते हैं इदा गाबर रजुल, जब कोई आदमी गायब हो जाए, फलम यो अरफ लहू मौज़ेउन, तो उसकी जगह का भी इलम नहीं है, वला यो अलम अहयुन हुआ अम्मैतुन, और ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा है, नसबल काजी मैं यहफजु मा लहू, तो नसबल काजी, काजी मुकरर करेगा, मैं यहफजु मा लहू, किसी ऐसे शख्स को जो उस मफकूद के माल की हिफाजत करे, व यकूम अलैही, और उसके माल पर कायम रहे, यानी उसके माल की निगरानी करे, उसके माल की हिफाजत करे और माल की निगरानी करे, व यस्तौफी हक़हू, और उस मफकूद के हक को वसूल करे। मसल किसी से दैन वगैरह लेना है, वयस्तौफी हक़हू, और ये जो निगरान है ये उस मफकूद के हक को वसूल करेगा, लिअन्न अल-क़ाज़ी नुसिबा नाज़िरन, इसलिए क्योंकि काजी जो है नुसिबा नाज़िरन, उसको शफकत करने वाले के तौर पर मुकरर किया गया है। काजी किस लिए मुकरर किया गया है, ताकि वो लोगों पर शफकत करे, लोगों के कामों की निगरानी करे और उनका ख्याल रखे, उनकी रियायत रखे भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल-क़ाज़ी नुसिबा नाज़िरन, इसलिए क्योंकि काजी जो है उसको बतौर निगरान के मुकरर किया गया है, लिकुल्लि आजिज़िन अनिन नज़री लिनफ़्सिही, हर वो शख्स जो आजिज है, अनिन नज़री लिनफ़्सिही, अपनी जात के लिए निगरानी से, हर वो शख्स जो अपनी जात के लिए निगरानी से आजिज है, जो खुद निगरानी वगैरह नहीं कर सकता, वल मफकूद बिहादिही सिफती, और वो शख्स जो गुम हो गया है वो भी इसी सिफत पर है, यानी वो भी अपनी माल वगैरह की निगरानी से आजिज है, व सारक सबी ये वल मजनूनी, और ये गुमशुदा शख्स जो है ये भी बच्चे और मजनून की तरह हो गया। तो जैसे उनके माल के लिए कोई निगरानी करने वाला चाहिए, इसके माल के लिए भी निगरानी करने वाला चाहिए, वफी नस्बिल हाफिज़ी लिमालिही, और इसके माल के लिए हिफाजत करने वाला मुकर्रर करने में, वल काइमी अलैही, और इसके माल के लिए निगरानी करने वाला मुकर्रर करने में, नज़रुन लहू, उस गुमशुदा आदमी पर शफकत है, उसके माल की हिफाजत के लिए किसी को मुकरर कर दिया जाए, उसके माल की निगरानी के लिए किसी को मुकरर कर दिया जाए, इसमें उस पर शफकत है, लिहाजा काजी उसके लिए किसी शख्स को मुकरर करेगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, वफी नस्बिल हाफिज़ी लिमालिही वल काइमी अलैही, और उसके माल के लिए हिफाजत करने वाला और निगरानी करने वाला मुकर्रर करने में, नज़रुन लहू, इस आदमी पर शफकत है, यानी इसका लिहाज रखना है, इसकी रियायत रखना है, तो लिहाजा काजी किसी को मुकर्रर करेगा। व कौलुहू यस्तौफी हक़हू, भाई ऊपर मतन में आया था कि काजी किसी आदमी को मुकरर करेगा जो इसके माल की हिफाजत करेगा, उसकी निगरानी करेगा, व यस्तौफी हक़हू, और इसका हक वसूल करेगा। तो अब उसकी वजाहत कर रहे हैं, कहते हैं वकौलुहू यस्तौफी हक़हू, और साहिब कुदूरी का जो कौल आया यस्तौफी हक़हू कि ये निगरानी करने वाला उस गायब आदमी के हक को वसूल करेगा, ला खफा अन्नहू यक़बिज़ु गल्लातिही, गल्लात जमा है गल्लतुन की, और ये आमदनी को कहते हैं, गल्ला किसे कहते हैं, आमदनी को, तो जमा है गल्लात भाई, तो कहते हैं ला खफा अन्नहु यक़बिज़ु ग़ल्लातिही, इस बात में कोई खिफा नहीं है कि ये निगरानी करने वाला उस गायब शुदा आदमी की आमदनियों पर कब्जा करेगा। वद्दैनल्लज़ी अक़र्र बिही ग़रीमुम मिन ग़ुरमाइही, ग़रीम भाई याद रखो, गरीम कर्ज खाह को भी कहते हैं और कर्जदार को भी कहते हैं। जैद ने किसी आदमी को 10 लाख रुपए कर्ज दिया तो जैद है कर्ज खाह, यह क्या करेगा, उसे वापस कर्ज का मुतालबा करेगा, और जिसको कर्ज दिया वो है कर्जदार। तो अरबी जुबान में गरीम का लफ्ज दोनों पर बोला जाता है, यानी यह अजदाद में से है। कर्ज देने वाले को भी गरीम कहते हैं यानी कर्ज खा, और जिस पर कर्ज आ गया है उसको भी गरीम कहते हैं यानी कर्जदार। तो कहते हैं कि ये इसके आमदनियों पर कब्जा करेगा। वद्दैन अल्लज़ी अक़र्र बिही, और इसके उस दैन पर भी जिसका इकरार किया है। गरीमुम मिन ग़ुरमाइही, उसके कर्जदारों में से किसी कर्जदार ने, वो जो शख्स गायब है उसका कर्जा है किसी आदमी पर, किसी आदमी ने कर्जा अदा करना है उस गायब शुदा आदमी को, तो ये कर्जदार जो हैं इनसे देन भी यही निगरान वसूल करेगा। बात समझ में आ गई, तर्जमा फिर देख लीजिए। ला खफा अन्नहु यक़बिज़ु ग़ल्लातिही वद्दैना, देखो वद्दैना इसका अतफ है माकबल में ग़ल्लातिही पर, और ग़ल्लातिही ये मनसूब है, इस पर कसरा आ रहा है, आप ये ना समझें ये मजरूर है, ये जमा मुअन्नस सालिम है और इसका नसब आता ही कसरा की सूरत में है। तो ग़ल्लातिही ये भी मनसूब और वद्दैन जो मातूफ है वो भी मनसूब, ये मफ़ऊल वाक़े हो रहे हैं। कहते हैं साहिब खुदूरी का जो ऊपर कौल आया कि अस्तौफी हक कहू कि उसके हक को वसूल करेगा, ला खफा इस बात में कोई पोशीदगी नहीं कि अन्नहु यक़बिज़ु ग़ल्लातिही, कि ये निगरान जो है ये उसकी आमदनियों पर कब्जा करेगा। वद्दैना और उसके उन दुयून पर भी कब्जा करेगा। अल्लज़ी अक़र्र बिही ग़रीमुम मिन ग़ुरमाइही, जिसका इकरार किया है उसके कर्जदारों में से किसी कर्जदार ने, जिसका इकरार किया है कर्जदार ने उसको भी वसूल करेगा। हां अगर कोई कर्जदार वो इकरार ही नहीं करता तो फिर ये उससे खुसूमत नहीं कर सकता, खुसूमत नहीं कर सकता। आगे आपको बतलाएंगे भाई, क्योंकि ये काजी की तरफ से सिर्फ कब्जे का वकील है कि वो जो गायब आदमी है उसके कर्जों वगैरह पर ये कब्जे वगैरह कर सकता है, लेकिन खुसूमत और मुकदमेबाजी नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा वो दें जिसका कर्जदारों में से कोई कर्जदार इकरार कर ले। लिअन्नहु मिम्बा बिल हिफ्ज़ी, इसलिए क्योंकि ये भी हिफाजत के बाब से है, किसी के आमदनियों और कर्जों पर कब्जा करना ये भी किस में से है, हिफाजत के बाब में से है, इसी से वो चीजें महफूज होंगी वरना तो महफूज नहीं रहेंगी। तो कहते हैं लिअन्नहु मिन बाबिल हिफ्ज़ी, इसलिए क्योंकि ये भी हिफाजत के बाब में से है। व युखासिमु फी दैनी वजब बिअक़्दिही, और ये खुसूमत कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, फी दैनिन ऐसे दैन में, वजब बिअक़्दिही जो इसके अपने अक़द की वजह से वाजिब हुआ है। भाई ये जो निगरान है अगर इसको किसी वजह से कोई चीज बेचनी पड़ी है, खरीदनी पड़ी है, उसके लिए मसलन उसके खेत हैं उनमें फसलें काश्त करनी है वगैरह, तो कोई चीज खरीदता है या बेचता है तो ये निगरान को अकद करना पड़ा, तो इस अकद के अंदर ये खुसूमत कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेओ शिरा वगैरह के अंदर जो अकद किया जाता है, जो अकद करने वाला जो है हुकूक अकद का ताल्लुक उसी से होता है, समन देना भी उसके जिम्मे और मबीए को वसूल करना भी उसी के जिम्मे होता है। लिहाजा ये अकद चूंकि उस निगरान ने किए हैं तो इनमें वो खुसूमत कर सकता है, ये माना है। वह युखासिमु फी दैनी वजब बिअक़्दिही, और ये निगरान जो है खुसूमत कर सकता है उस देन में जो इसके अपने अकद की वजह से वाजिब हुआ है। लिअन्नहु असीलुन फी हुकूकिही, इसलिए क्योंकि वो इस अकद के हुकूक में असील है, इस अकद के हुकूक में असील है, क्योंकि इसने खुद ये अकद किया है, और बेओ शिरा वगैरह के अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक आकिद से होता है, तो ये निगरान खुद आकिद है, तो ये असील हुआ, इस आकद में असील हुआ, हुकूक अकद का ताल्लुक इसी से है। समन भी यही अदा करेगा और मबिया भी यही अदा करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये इस आकद के अंदर असील है भाई, हकीकत में तो वकील है, हकीकत में तो वकील है, लेकिन बहरहाल ये इन आकदों के हुकूक का ताल्लुक वकील से ही होता है, तो वकील ही असील होता है इन आकदों के अंदर भाई। कुछ आकद ऐसे हैं कि उनके हुकूक का ताल्लुक मुवक्किल से होता है, एक आदमी को दूसरे ने भेजा कि फलां जगह जाकर मेरा निकाह करवा दो, तो यहां निकाह के हुकूक का ताल्लुक मुवक्किल से होता है, लेकिन बेउ शिरा में तो हुकूक का ताल्लुक वकील से होता है, तो वकील ही गोया असील है हुकूक के अंदर भाई। ये माना है ले अन्नहु असील उनफी हुकूक ही, इसलिए क्योंकि ये आकद जो इसने खुद सर अंजाम दिया है, इसके हुकूक के अंदर ये शख्स ये निगरान असील है। वला युखासिमु फिल लदी तवल्लाहुल मफकूदु, वला युखासिमु, और ये निगरान खुसूमत नहीं कर सकता फिल लदी उस आकद के अंदर, तवल्लाहुल मफकूदु, जिसका मुतवल्ली मफकूद था। ये निगरान जो अकद इसने खुद किया है उसमें तो यह खुसूमत कर सकता है, लेकिन जो अकद उस गायब आदमी ने किए थे जिनका मुतवल्ली वो गायब आदमी था, यानी उसने वो अकद सर अंजाम दिए थे, उन अकूद के अंदर ये निगरान खुसूमत नहीं कर सकता, ये उनमें खुसूमत नहीं कर सकता। ये माना है वला युखासिमु, और ये निगरान खुसूमत नहीं कर सकता फिल लदी उस आकद के अंदर, तवल्लाहुल मफकूदु, जिसका मुतवल्ली मफकूद था, यानी जिसको मफकूद ने सर अंजाम दिया था। वला फी नसीबिन लहू फी आकारिन औ उरूजिन फी यदि रजुलिन, भाई आकार, आकार आप पढ़ चुके हैं, गैर मनकूली जायदाद, जैसे काबिल काश्त जमीन है यानी खेत वगैरह, बाग है, घर है, दुकान है, फैक्ट्री है, ये चीजें जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इनको आकार कहते हैं, यानी गैर मनकूली जायदाद। अब वो जो गायब आदमी है, इसकी कुछ जमीन किसी दूसरे आदमी के कब्जे में है, या वो गायब आदमी का कुछ सामान है, सामान तिजारत वगैरह है, या कुछ मवेशी किसी दूसरे आदमी के कब्जे में है, तो इनके अंदर भी ये निगरान खुसूमत नहीं कर सकता। तवज्जो है, गायब आदमी की कुछ जायदाद किसी दूसरे आदमी के कब्जे में है, या गायब आदमी का कुछ सामान है यानी मवेशी वगैरह हैं, या सामान तिजारत दूसरे आदमी के कब्जे में है, तो उसके अंदर ये खुसूमत नहीं कर सकता। ये मानना है वला फी नसीबिन लहू, और इसी तरह ये खुसूमत नहीं कर सकता उस गायब आदमी के हिस्से में, फी आकारिन औ उरूजिन, ऐसी गैर मनकूली जायदाद में या ऐसे सामान में, फी यदि रजुलिन, जो किसी दूसरे आदमी के कब्जे में है, चाहे अमानत के तौर पर है या जिस तरह भी दूसरे आदमी के कब्जे में है, ये निगरान गैर मनकूली जायदाद और उस सामान में जो दूसरे आदमी के कब्जे में है, ये निगरान गायब की तरफ से खुसूमत नहीं कर सकता भाई। भाई क्या वजह है, क्यों नहीं खुसूमत कर सकता? कहते हैं लिअन्नहु लैसा बिमालिकिन वला नाइबिन अनहु, इसलिए क्योंकि ना तो ये निगरान उस माल का मालिक है, वला नाइबिन अनहु, और ना मालिक की तरफ से नाइब है, मालिक की तरफ से नाइब और वकील भी नहीं है, तवज्जो है, तो ना ये मालिक है और ना मालिक का नाइब यानी ना वकील वगैरह है, लिहाजा ये खुसूमत नहीं कर सकता। कहते हैं लिअन्नहु लैसा बिमालिकिन वला नाइबिन अनहु, इसलिए क्योंकि ना तो ये उस माल का मालिक है और ना मालिक की तरफ से ये नाइब है। इन्नमा हुआ वकीलुम बिल कब्ज मिन जिहतिल काजी, ये तो सिर्फ वकील बिल कब्ज है काजी की तरफ से, इसे तो काजी ने वकील बनाया है गायब की तरफ से, ताकि उसके माल वगैरह और दुयून पर और आमदनियों पर कब्जा करे और हिफाजत से रखे भाई। तो कहते हैं इन्नमा हुआ वकीलुम बिल कब्ज मिन जिहतिल काजी, और ये तो कब्जे का वकील है काजी की जानिब से। वह अन्नहु ला यमलिकुल खुसूमत बिला खिलाफिन, भाई याद रखो वकील बिल कब्ज एक होता है काजी की तरफ से, जैसे यहां काजी ने उस गायब आदमी के लिए एक वकील बना दिया कि तुम इस गायब आदमी की आमदनियों पर भी कब्जा करो और उसके वो दुयून जो जो मकरूज खुद जो हैं उनका इकरार कर रहे हैं वो भी वसूल करो और महफूज रखो अपने पास। तो ये कब्जे का वकील हुआ किसने मुकरर किया है? काजी ने। और एक वकील बिल कब्ज है जिसे मालिक मुकरर करता है। मसलन आपने जैद से 10 लाख रुपए वसूल करने हैं, आपने अपना एक वकील भेजा कि जाओ जाकर जैद से मेरे 10 लाख रुपए वसूल करके लाओ। तो ये जो वकील है ये आपकी तरफ से मालिक की तरफ से मुकरर है, और ये किस चीज का वकील है? कब्जे का वकील है कि जाकर उस देन पर कब्जा करे, उसको वसूल करे। तो एक वकील बिल कब्ज है काजी की तरफ से, और एक वकील बिल कब्ज होता है मालिक की तरफ से। याद रखो, वो कब्जे का वकील जिसे मालिक ने मुकरर किया है, क्या ये वकील खुसूमत कर सकता है या नहीं? मसलन आपने वकील को भेजा, जाओ जैद से मेरे 10 लाख रुपए वसूल करके लाओ, और आपका वकील जैद के पास गया 10 लाख रुपए वसूल करने, जैद ने इनकार कर दिया, वो पैसे नहीं दे रहा वकील को, तो क्या आपका ये जो वकील बिल कब्ज है क्या ये जैद से मुकदमा कर सकता है, क्या खुसूमत कर सकता है? तो इसमें साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। इमाम साहिब के नजदीक मालिक का वकील बिल कब्ज जो होता है वो खुसूमत कर सकता है, जबकि साहिबैन के नजदीक मालिक का वकील बिल कब्ज खुसूमत नहीं कर सकता। तवज्जो है? तो वो वकील बिल कब्ज जिसे मालिक ने बनाया हो उसमें साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक ये वकील जो है खुसूमत कर सकता है, और साहिबैन के नजदीक ये वकील खुसूमत नहीं कर सकता। तो इसके अंदर तो इख्तिलाफ है, लेकिन वो वकील बिल कब्ज जिसे काजी ने मुकरर किया है, जैसे इस गुमशुदा आदमी के लिए काजी ने वकील मुकरर किया है, इसमें तो हमारे तीनों अइमा का इत्तेफाक है ये खुसूमत नहीं कर सकता। इसमें तीनों अइमा का इत्तेफाक है कि काजी का मुकरर किया हुआ वकील बिल कब्ज खुसूमत नहीं कर सकता। हां, मालिक का मुकरर किया हुआ वकील बिल कब्ज जो है उसके अंदर इमाम साहब के नजदीक वो खुसूमत कर सकता है, और साहिबैन के नजदीक वो खुसूमत नहीं कर सकता। यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं इन नमा हुआ वकील बिल कब्ज मिन जिहतिल काजी, इसलिए क्योंकि ये निगरान जो है ये कब्जे का वकील है काजी की जानिब से। व अन्नहु ला यमलिकुल खुसूमत बिला खिलाफिन, और ये खुसूमत का मालिक नहीं है बगैर किसी इख्तिलाफ के, यानी बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक ये खुसूमत का मालिक नहीं है, ये खुसूमत नहीं कर सकता। इन नमल खिलाफ फिल वकील बिल कब्ज मिन जिहतिल मालिकी फिद दैनी, और वो जो इख्तिलाफ है फिल वकील बिल कब्जी वो उस वकील बिल कब्ज में है मिन जिहतिल मालिकी जो मालिक की तरफ से होता है फिद दैनी देन के अंदर, यानी वो वकील जो देन के कब्जे के अंदर मालिक की तरफ से वकील होता है उसमें इख्तिलाफ है। ये जो वकील बिल कब्ज है काजी की जानिब से इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, ये तो बिल इत्तेफाक खुसूमत नहीं कर सकता। तो ये माना है इन नमल खिलाफ फिल वकील बिल कब्ज मिन जिहतिल मालिक फिद दैनी, कि इख्तिलाफ तो उस वकील बिल कब्ज के बारे में है जो मालिक की तरफ से होता है देन के बारे में। व इदा काना कज़ालिक, और जब मामला ऐसा ही है, यानी ये वकील बिल कब्ज जिसे काजी ने मुकरर किया है, जब ये खुसूमत नहीं कर सकता, तो कहते हैं इदा काना कदालिक, और जब मामला ऐसा ही है कि काजी का वकील जो है ये खुसूमत का मालिक नहीं है, तो ये तज़म्मनुल हुक्म बिही, तो इसका हुक्म देना कज़ाअन अलल गाइबी, ये कज़ा अलल गाइब है। वह अन्नहु ला यजूज़ु, और ये जायज नहीं है। भाई याद रखो, याद रखो, फिका का अहम जाब्ता है कजा अलल गाइब जायज नहीं। काजी किसी गायब के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। दो आदमियों में मुकदमा चल रहा है तो दोनों का मौजूद होना जरूरी है, या उनके नाइब का मौजूद होना जरूरी है। भाई तो काजी के पास जब दो आदमी अपना झगड़ा लेकर आते हैं तो वहां मकसद होता है झगड़े को खत्म करना, और झगड़ा तभी खत्म होगा जब दोनों फरीक मौजूद होंगे। अगर दोनों फरीक नहीं है, सिर्फ एक फरीक है, फिर तो झगड़ा खत्म नहीं होगा। भाई लिहाजा काजी गायब के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता, कजा अलल गाइब जायज नहीं है। चुनाचे इसीलिए आप भी देखते हैं आजकल भी अदालतों के अंदर कोई फैसले होते हैं तो बाकायदा मुजरिम को लाया जाता है अदालत के अंदर और फिर फैसला किया जाता है। तो कहते हैं वह इदा काना का दालिक, और जब मामला ऐसा ही है यानी काजी का वकील खुसूमत का मालिक नहीं है तो यह तजमनुल हुक्म भी ही, तो इसका हुक्म देना मुतजमिन है, यानी अगर काजी इसका हुक्म दे दे, काजी इस खुसूमत का हुक्म दे दे तो यह हुक्म मुतजमिन होगा। कजा अन अलल गाइबी, गायब के खिलाफ फैसला करने को, वह अन्नहु ला यजूज, और गायब के खिलाफ तो फैसला जायज नहीं। तो कहते हैं वह अन्नहु ला यजूज, और वो तो जायज नहीं है, इल्ला इदा राहुल काजी व कजा बिही लिअन्नहु मुजतहदुन फीह। तो आपको साहिब हिदायत ने बतला दिया कि कजा अलल गाइब जायज नहीं है, लिहाजा काजी का वकील खुसूमत नहीं कर सकता, क्योंकि कजा अलल गाइब जायज नहीं है। इल्ला इदा राहुल काजी, मगर जब काजी की यह राय हो, वह कजा भी ही, और वह इसका फैसला कर दे कि यह खुसूमत कर सकता है, ये आदमी, ये जो मेरा वकील है, यह खुसूमत कर सकता है, यानी कजा अलल गाइब का काजी फैसला कर रहा है, तो कहते हैं इस सूरत में फिर काजी का फैसला नाफिज हो जाएगा। वजह यह कि यह मुज्तहद फी मसला है, इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश है। इंदल अहनाफ कजा अलल गाइब जायज नहीं, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक कजा अलल गाइब जायज है। लिहाजा अगर काजी मुज्तहद फी मसले के अंदर उसकी एक राय बनती है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देगा, तो याद रखो वो काजी का फैसला सही हो जाएगा और नाफिज होगा। भाई ये माना है इल्ला इदा राहुल काजी, मगर ये कि जब काजी की ये राय बने, व कजा भी ही, और काजी इसका फैसला कर दे, तो फिर ये नाफिज हो जाएगा। लिअन्नहु मुज्तहदुन फीही, इसलिए क्योंकि यह मसला मुज्तहद फी है, यह कजा अलल गाइब यह मुज्तहद फी है, इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश है, और जब काजी ने एक फैसला कर दिया है तो काजी का यह फैसला सही है, नाफिज हो जाएगा। आगे देखिए सुम्मा मा काना युखाफु अलैहिल फसादु यबीउहुल काजी। भाई वो शख्स जो गायब है, उसका बाज माल ऐसा है कि उसके खराब होने का खदशा है, तो काजी उसके बेचने का हुक्म देगा। यानी जो चीजें ज्यादा अरसा नहीं रखी जा सकती, खराब हो जाती हैं, काजी उनको बेच देगा, और जो चीजें ज्यादा अरसे तक महफूज रखी जा सकती हैं तो काजी उनको बेचने का हुक्म नहीं देगा। भाई तो कहते हैं सुम्मा मा काना युखाफु अलैहिल फसादु, फिर वो चीजें कि उनके फासिद होने का खौफ है, यबीउहुल काजी, काजी उसको बेच देगा, लिअन्नहु तअज़्ज़रा अलैहि हिफ्ज़ु सूरतिही, इसलिए क्योंकि काजी पर मुश्किल हो गया है उनकी सूरत की हिफाजत करना, काजी पर उनकी सूरत की हिफाजत करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो ज्यादा देर महफूज रहती ही नहीं है। तो कहते हैं लिअन्नहु तअज़्ज़रा अलैहि हिफ्ज़ु सूरतिही, इसलिए क्योंकि काजी पर उनकी सूरत की हिफाजत करना मुमकिन नहीं रहा, फयंज़ुरु लहू, तो काजी उस पर शफकत करेगा, बिहिफ्ज़िल माना, माना के एतबार से हिफाजत करते हुए, फयंज़ुरु लहू बिहिफ्ज़िल माना, तो काजी उसकी निगरानी करेगा, बिहिफ्ज़िल माना, माना की हिफाजत करते हुए, यानी उसकी कीमत को उसके लिए महफूज रखेगा, उसको बेच देगा, तो सूरतन तो काजी के लिए हिफाजत मुमकिन न था, वो चीज खराब होने वाली थी, लेकिन मानन तो हिफाजत मुमकिन है कि उसकी कीमत को महफूज रख लिया जाए। ये माना है फयंज़ुरु लहू बिहिफ्ज़िल माना, तो काजी उसकी रियायत करेगा उसके माना यानी कीमत की हिफाजत करते हुए, वला यबीउ मा ला युखाफु अलैहिल फसादु, और काजी नहीं बेचेगा वो माल के जिसके खराब होने का खौफ नहीं है, फी नफकतिं वला गैरिहा, नफके में और नफके के अलावा में। भाई देखो काजी ने इसी माल में से उस शख्स के बीवी बच्चों पर भी खर्च करना है, क्योंकि बीवी बच्चों का खर्चा भी उस गायब शुदा आदमी पर वाजिब था, तो नफके वगैरह या किसी और चीज के अंदर काजी इन चीजों को नहीं बेचेगा जिनको महफूज रखना मुमकिन है। भाई जो कहते हैं वला यबीउ मा ला युखाफु अलैहि الفساد, और काजी नहीं बेच सकता जिसके खराब होने का खौफ नहीं है, फी नफकतिन, ना तो नफके में, वला गैरिहा, और ना नफके के अलावा किसी और चीज में, लिअन्नहु ला विलायत लहु अलल गाइबी, इसलिए क्योंकि काजी को कोई विलायत हासिल नहीं है उस अगाइब आदमी पर, इल्ला फी हिफ्ज मालिही, मगर उसके माल की हिफाजत के अंदर, काजी की जिम्मेदारी सिर्फ उसके माल की हिफाजत है, जैसे मर्जी तसरुफ करना चाहे ये इख्तियार काजी को नहीं है भाई। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि काजी को गायब पर विलायत नहीं सिवाय उसकी माल की हिफाजत में, फला यसूगु लहू तर्क हिफ्ज सूरती, फला यसूगु लहू, लिहाजा काजी के लिए गुंजाइश नहीं है तर्क हिफ्ज सूरती, सूरत की हिफाजत को तर्क करना, यानी जिन चीजों को इसी सूरत पर महफूज रखना मुमकिन है तो काजी इनकी सूरत की हिफाजत को छोड़ दे और इनको बेच दे, तो काजी के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है भाई। कहते हैं फला यसूगु लहू, काजी के लिए गुंजाइश नहीं है तर्क हिफ्ज सूरती, उस माल की सूरत की हिफाजत को छोड़ने की, वह हुआ मुमकिन, और हाल यह है कि सूरत की हिफाजत मुमकिन भी है, यानी इन चीजों में मुमकिन है, तो फिर काजी उसी तरह महफूज रखेगा। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وينفق على زوجته واولاده, اور قاضی خرچ کرے گا اس غائب آدمی کی بیوی پر اور اس کی اولاد پر, من ماله, اسی غائب آدمی کے مال میں سے, وليس هذا الحكم مقصورا على الاولاد, اور یہ حکم اولاد پر بند نہیں ہے۔ قصر کا کیا معنی؟ قصر کا معنی ہے بند کرنا, یعنی حصر کرنا۔ وليس هذا الحكم مقصور, भाई देखो मतन में आया कि उसकी बीवी पर और उसकी औलाद पर खर्च करेगा, तो ये वो गायब आदमी जो है, अगर उसके मां बाप भी फकीर हैं तो उस मां बाप का खर्चा भी उसी के माल में वाजिब था, तो लिहाजा ये जो मतन में औलाद का जिक्र आया तो ये हुक्म सिर्फ औलाद ही का नहीं है बल्कि तमाम उसूलो फुरू का है जो गरीब हैं। तवज्जो है भाई, ये मसला बड़ी तफसील से पीछे जिक्र हुआ था किताबुन नफकात के अंदर, जहां बीवी का नफका जिक्र हुआ था वहीं पर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि इंसान के उसूल और फुरू, उसूल यानी ऊपर की तरफ जो हैं दादा दादी नाना नानी वगैरह, अगर ये फकीर हैं तो इन पर भी खर्च करना इसी आदमी की जिम्मेदारी है, और जो इस आदमी के फुरू हैं यानी औलाद और औलाद की औलाद जो है वो भी अगर नाबालिग हैं और उनका कोई माल नहीं है तो उन सब का खर्चा इसी आदमी पर होगा। तवज्जो है, तो हासिल कलाम ये कि बीवी का खर्चा तो हर हाल में खावंद पर आएगा, क्योंकि बीवी के साथ उसका निकाह हुआ है, बीवी ने अपने आप को खावंद के लिए घर में रोक कर रखा है, तो बीवी का खर्चा तो हर हाल में खावंद पर आएगा, चाहे बीवी खुद ही मालदार क्यों ना हो फिर भी उसका खर्चा खावंद के जिम्मे है। इसी तरह याद रखो, इंसान के उसूल और फुरू यानी जिनके साथ वलादत वाला रिश्ता है उनका खर्चा भी इंसान पर होता है, लेकिन यह उस वक्त है जब उनका अपना माल ना हो, जिस वक्त उनका अपना माल ना हो, लेकिन अगर एक शख्स की नाबालिग औलाद है और उनका अपना माल मौजूद है, या इस शख्स के उसूल हैं ऊपर वालिदैन हैं नाना दादा वगैरह हैं, अगर उनका अपना माल मौजूद है तो असल यही है कि इंसान का खर्चा अपने माल में होता है, लिहाजा उनका खर्चा फिर इस आदमी पर नहीं आएगा। अगर वो उसूल और फुरू जो है उनका अपना माल मौजूद है तो फिर उनका खर्चा इस आदमी पर नहीं आएगा, लेकिन अगर उनका अपना माल नहीं है यानी उसूल जो है, मसलन देखो उसूल हैं और वो गरीब हैं उनका अपना माल नहीं, तो उनका खर्चा इस आदमी पर आएगा। और फुरू के अंदर वो फुरू जो नाबालिग हैं, वो बच्चे जो नाबालिग हैं, या इसी तरह जो औलाद ने जो मुअन्नस हैं, चाहे वो बालिग ही क्यों ना हो वो भी कमाने से आजिज हैं, तो उनका भी खर्चा इस आदमी पर आएगा अगर उनका कोई माल नहीं है। और जो नीचे औलाद के अंदर जो बालिग हैं मर्द, अगर वो अपाहज या अंधे वगैरह हैं तो फिर उनका खर्चा इस आदमी पर आएगा, और अगर वो खुद कमाने के काबिल हैं फिर चाहे उनके पास माल ना हो फिर भी इस आदमी पर उनका खर्चा नहीं है। तफसील समझ में आ गई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयुन्फिकु अला ज़ौजतिही व औलादिही मिन मालिही, और काजी उस शख्स की बीवी और उसकी औलाद पर उसके माल में से खर्च करेगा। वलैसा हाज़ल हुक्म मक्सूरन अलल औलादी, और यह हुक्म औलाद पर बंद नहीं है। बल यउम्मु जमीअ क़राबतिल विलादी, बल्कि यह हुक्म आम है जमीअ क़राबतिल विलादी, वलादत वाले सारे रिश्तों में, वलादत वाले सारे रिश्तों में यह हुक्म आम है। इन इसमें तमाम उसूल और फुरू दाखिल हो गए। वल असलू, और असल यह है, जाबता यह है कि अन्न कुल्लमन यस्तहिक्कुन नफ़क़ता फी मालिही हाल हज़रतिही बिगैर क़ज़ाइल क़ाज़ी। भाई याद रखो, ये जो बीवी का खर्चा एक आदमी पर आता है, इसमें किसी काजी के फैसले की जरूरत नहीं, किसी काजी के फैसले की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये अपने उसूल और फुरू जो मैंने बयान किए, जिनका माल नहीं है, औलाद के अंदर जो नाबालिग हैं या बालिग औरतें हैं, औलाद के अंदर मुअन्नस हैं लेकिन बालिग हैं, या बालिग मुजक्कर हैं लेकिन वो खुद कमा नहीं सकते, अपाहज हैं या अंधे हैं, तो औलाद के अंदर इन सब का खर्चा इस शख्स पर होगा। और याद रखो, इनमें किसी कजाए काजी की भी जरूरत नहीं है, मसला आप पीछे पढ़ चुके हैं। जबकि इसके अलावा और जो रिश्तेदार हैं, मसलन एक आदमी का भाई गरीब है, उसका कोई माल नहीं और वो माजूर या अपाहज है, खुद भी माल नहीं कमा सकता, तो इसका खर्चा इस आदमी पर आएगा। लेकिन उसमें जरूरी है या तो वो अपनी रजामंदी से दे रहा हो, या अगर वो नहीं दे रहा तो फिर कजाए काजी के जरिए उस पर ये खर्चा लाजिम किया जाएगा। तो जिनके साथ वलादत वाला रिश्ता है उनके खर्चे इंसान पर आते हैं और वहां किसी कजाए काजी की जरूरत नहीं। अगर काजी को वहां कभी फैसला करना भी पड़ जाए तो वो दरअसल काजी का फैसला नहीं, काजी सिर्फ मदद कर रहा है। मसलन एक आदमी की नाबालिग औलाद है या बीवी है और वो उन पर खर्च नहीं कर रहा, तो वो काजी के पास आ गए कि ये हमारा खर्चा नहीं दे रहा, तो काजी के कहने की वजह से खर्चा वाजिब नहीं हुआ, खर्चा तो इस आदमी पर पहले से वाजिब था, काजी ने सिर्फ उनकी मदद की है, इस खर्चे के वसूली में उनकी मदद की है। तो मालूम हुआ ये जो बीवी और उसूल और फुरू होते हैं, इनका खर्चा बगैर कजाए काजी के ही मालदार आदमी पर वाजिब होता है। लेकिन इनके अलावा और रिश्तेदार जो हैं, जिनके साथ वलादत वाला रिश्ता नहीं है, जैसे भाई है या खाला है या मामू वगैरह, भाई अब इनके साथ वलादत वाला रिश्ता नहीं है, तो ये अगर गरीब हैं और इनके पास कोई माल नहीं, तो अगर ये मुअन्नस है और बालिगा है या मुजक्कर है लेकिन वो अपाहज या माजूर है या अंधा है, तो फिर इनका खर्चा काजी इस शख्स पर वाजिब करेगा। ये काजी के पास आ गए और काजी ने फिर इनके हक में फैसला कर दिया। तो मालूम हुआ जिनसे वलादत वाला रिश्ता है वहां कजाए काजी की कोई जरूरत नहीं, और जिनसे वलादत वाला रिश्ता नहीं उनका खर्चा भी इंसान पर आता है लेकिन वहां कजाए काजी की जरूरत है। भाई तवज्जो है, तो यहां जो आया कि काजी उस गायब शुदा आदमी की बीवी पर भी खर्च करेगा और औलाद पर भी खर्च करेगा, तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि सिर्फ औलाद का यह हुक्म नहीं है बल्कि जिनसे भी वलादत वाला रिश्ता है, चाहे उसूल है चाहे फुरू है, सब इस हुक्म के अंदर दाखिल हैं। भाई अब जाब्ता आगे साहिब हिदायत बतलाने लगे हैं कि जिन पर कजाए काजी के बगैर खर्च करना वाजिब है, तो यह गायब के माल में से काजी उनका नफका देता रहेगा, क्योंकि यह नफका तो पहले से ही वाजिब है, इसमें किसी कजाए काजी की जरूरत नहीं। और जिनके नफके में कजाए काजी की जरूरत होती है, तो वह जो है उनका खर्चा अगर काजी ने पहले मुकरर किया था, यानी गायब शुदा आदमी मौजूद था और उस वक्त इसकी खाला आ गई जो गरीब है उसके पास माल नहीं, या इसका मामू है और वो माजूर और अपाहज है वो काजी के पास आ गए, या इसका भाई है बालिग है लेकिन माजूर और अपाहज है वो काजी के पास आ गए, और अभी ये शख्स गायब नहीं हुआ था, काजी ने फैसला कर दिया कि इनको भी खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें इनका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, तो अगर काजी ने पहले फैसला किया था उस आदमी की मौजूदगी में और अब यह शख्स गायब है, तो भी काजी उन लोगों को भी खर्चा देता रहेगा, इसी गायब के माल में से देता रहेगा। लेकिन अगर काजी ने यह फैसला पहले नहीं किया था और उस शख्स के गायब होने के बाद अब इसके जो खाला है जिसके पास माल नहीं, या मामू या भाई है और वह अपाहज और माजूर हैं या अंधे हैं, तो काजी अब उनको खर्चा नहीं दे सकता, क्योंकि काजी अगर अब उनको खर्चा देगा और हाल यह है कि माल का मालिक गायब है तो यह कजा अलल गायब हो जाएगा, और कजा अलल गायब तो काजी को इजाजत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल असलू, और असल और जाबता यह है कि अन्नकुल्ल मन यस्तहिकुन नफकता, कि हर वो शख्स जो नफके का मुस्तहिक है, फी माल ही उस गायब आदमी के माल में, हाल हजरती ही उसकी मौजूदगी की हालत में, अभी तो गायब है लेकिन जो मौजूदगी की हालत में नफके का मुस्तहिक है, बगैर कजा इल काजी, काजी के फैसले के बगैर ही, तो युनफिकु अलैहि मिन मालिही, तो काजी इन पर खर्च करेगा उस मगायब के माल में से, इंदा गायबती ही, जब वो आदमी गायब है, जब मौजूदगी में नफका बगैर कजा काजी के वाजिब था, तो अब भी काजी इन पर गैबत की सूरत में भी इन पर खर्च करेगा। लिअन्न अल-क़ाज़ा अहीना इज़ी यकूनु इआनतन, इसलिए क्योंकि काजी का फैसला उस वक्त सिर्फ इआनत है जी। काजी अगर फैसला करता भी है बीवी या बच्चों के खर्चे का, तो वो सिर्फ मदद कर रहा है, हकीकत में तो वो शरीयत ने वैसे ही वाजिब किए हुए हैं, उसमें किसी कजाए काजी की जरूरत नहीं। तो उस आदमी के मौजूदगी में जैसे उस पर इनका खर्चा वाजिब था, तो गैर मौजूदगी में भी काजी इनको देता रहेगा। वकुल्ल मन ला यस्तहिकु हाफी हजरती ही, और हर वो रिश्तेदार के जो इस आदमी की मौजूदगी में खर्चे का मुस्तहिक नहीं था, इल्ला बिल कजाई, मगर कजाए काजी से, तो ला युनफिकु अलैहि मिन मालिही, तो काजी उस गायब आदमी के माल में से उस पर खर्च नहीं करेगा, फी गैबती ही, उसकी गैर मौजूदगी में। वो मौजूद होता तो फिर तो काजी फैसला कर सकता था जी। इसके भाई और मामू वगैरह के लिए, लेकिन अब तो वो गायब है और काजी ने उस वक्त फैसला नहीं किया था, तो अब भी फैसला नहीं कर सकता। तो कहते हैं वकुल्ल मन ला यस्तहिकु हाफी हजरती ही, और हर वो रिश्तेदार जो नफके का मुस्तहिक नहीं है उस शख्स की मौजूदगी में, इल्ला बिल कजाई, मगर काजी के फैसले के जरिए, ला युनफिकु अलैहि मिन मालिही फी गैबती ही, तो काजी उस पर खर्च नहीं करेगा उस गायब आदमी के माल में से उस शख्स की गैर मौजूदगी में, लिअन्न नफकत हीना इज़ इंतजिबु बिल कजाई, इसलिए क्योंकि खर्चा उस वक्त फिर वाजिब होता है कजा की वजह से, यानी काजी के फैसले की वजह से। वल कज़ाउ अलल गाइब मुमतनिउन, और गायब के खिलाफ फैसला जो है वो तो मुमतनिउ है। फमिनल अव्वली, अब बयान करने लगे हैं भाई पहली किस्म के अफराद कौन से हैं। मैंने बयान कर दिया कि जिनमें कजाए काजी की जरूरत नहीं, वो उसूल हैं और फुरू हैं और बीवी है भाई। तो कहते हैं फमीनल अव्वली, तो पहली किस्म में से जो हैं, अल औलाद उस्सिगारु, नाबालिग औलाद है, वल इनासु मीनल की बारी, और मुअन्नस हैं बालिगों में से, औलाद में से जो बालिग मुअन्नस हैं, क्योंकि वो माल नहीं कमा सकती। वज़मना मीना जुकूरिल की बारी, जमना जमा है जमीन की, और जमीन कहते हैं अपाहज और माजूर को। कहते हैं वज़मना मीना जुकूरिल की बारी, और मुजक्कर बालिगों में से जो अपाहज हैं, तो इनका खर्चा उस पर आएगा। मैंने आपको बतलाया, फिर सुन लें, याद रखो बीवी का खर्चा हर हाल में उस खावंद पर आता है, चाहे बीवी मालदार ही क्यों ना हो, लेकिन नाबालिग औलाद है या उसूल हैं, उनका खर्चा इंसान पर तब आता है जब उनका अपना माल ना हो। अगर उनका अपना माल है तो उनका खर्चा उन्हीं के माल में से होगा, किसी दूसरे पर नहीं आएगा, क्योंकि असल और जाबता यही है कि इंसान का खर्चा अपने माल में से होता है, किसी दूसरे के माल में से नहीं होता। तो ये पहली किस्म थे। वह मीना सानी, और दूसरी किस्म जो है, यानी जो काजी के फैसले के बगैर नफके के मुस्तहिक नहीं है, वो जो है अल अख, भाई है, वल उख्तु, और बहन है, वल खालु, और मामू है, वल खालतु, और खाला है भाई, इसी तरह चचा और फूफी वगैरह भी हैं भाई। व कौलुहु मिन मालिही, भाई मतन में आया पीछे, ये जो अभी मतन गुजरा, काला व युनफिकु अला जौजती ही व औलादी ही मिम माली ही, उसी गायब के माल में से काजी इन पर खर्च करेगा। इस माल से कौन सा माल मुराद है? तो कहते हैं इसके माल से मुराद दिरहम और दीनार वगैरह हैं, कि उनमें से काजी खर्चा दे सकता है। तो कहते हैं वकौलुहु मिम माली ही, और साहिब कुदूरी का कौल जो आया मिम माली ही, मुरादुहु दराहिमु व दनानीरु, इससे साहिब कुदूरी की मुराद दिरहम और दीनार हैं। दनानीर, भाई देखो ये जमा तकसीर है दीनार की, और आपने जाप्ता पढ़ा है अतसगीर व तकसीर यरुद्दानिल अशिया इला उसूलिहा, कि किसी लफ्ज की असल का आपने पता चलाना हो तो उसकी तस्गीर को देख लेते हैं या उसकी जमे तकसीर को देख लेते हैं। तो दीनार की जमे तकसीर क्या है? दनानीर, और दनानीर के अंदर दो नून हैं और दीनार में तो एक नून है। मालूम हुआ दीनार में भी असल में दो नून थे, असल में था दिनार, फिर एक नून को या से बदल दिया गया तखफीफ के लिए, तो क्या बन गया? दीनार। भाई तो कहते हैं साहिब कुदूरी के से मुराद दिरहम और दीनार हैं, ले अन हक्कहुम फिल मतऊम वल मलबूस, इसलिए क्योंकि ये बीवी और औलाद वगैरह का हक जो है फिल मतऊम ये खाई जाने वाली चीज में है, वल मलबूसी और पहने जाने वाली चीज में है। अगर खाई जाने वाली चीज यानी गल्ला मौजूद है तो काजी उसी में से देगा, और अगर उस कपड़े मौजूद हैं तो काजी इन्हीं में से इनको कपड़े देगा, लेकिन अगर उस आदमी के माल में गल्ला या कपड़े नहीं है तो फिर उनकी कीमत देना पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कीमत तो दिरहम और दीनार वगैरह के जरिए ही दी जाएगी। तो कहते हैं लिअन्ना हक्कहुम फिल मतऊमी वल मलबूसी, इसलिए क्योंकि इन लोगों का हक जो है खाई जाने वाली चीजों में और पहनी जाने वाली चीजों में है। फैदा लम यकुन जालिका फी मालिही, जब उस गायब आदमी के माल में ये चीजें नहीं है यानी मतऊम और मलबूस नहीं है, तो युक्ताजु इलल क़ज़ा इबिल कीमती, तो हाजत होगी कि कीमत का फैसला किया जाए। वही नकदानी, और कीमत तो ये नकदियां ही हैं भाई, दिरहम और दीनार वगैरह। व तिब्रु बिमंजिलती ही माफी हाजल हुक्मी, तिब्र कहते हैं सोने और चांदी का टुकड़ा। भाई ये जो दिरहम और दीनार हैं इनकी तो खास शक्ल होती है, इन पर तो मोहर लगी होती है बाकायदा, लेकिन आम सोना और चांदी जो है उन पर तो मोहर नहीं लगी होती, तो क्या उनका भी यही हुक्म है या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि सोने और चांदी का टुकड़ा भी इसी हुक्म में है। कहते हैं वत्तिब्रु बिमंजिलती ही माफी हादल हुक्मी, और सोने और चांदी का जो टुकड़ा है वो भी दिरहम और दीनार के दर्जे में ही है इस हुक्म के अंदर। लिअन्नहु यस्लुहु कीमतन कल मजरूबी, इसलिए क्योंकि ये सोने चांदी का टुकड़ा जो है ये भी कीमत होने की सलाहियत रखता है, कल मजरूबी जैसे कि वो सोना और चांदी जिन पर मोहर लगाई गई है। मजरूब जिस पर मोहर लगाई गई है यानी दिरहम और दीनार मुराद हैं, तो ये सोने चांदी का टुकड़ा भी कीमत बनने की सलाहियत रखता है जैसे कि मोहर लगे हुए सोना और चांदी हैं यानी दिरहम और दीनार हैं। तो कहते हैं लिअन्नहु यस्लुहु कीमतन कल मजरूबी, इसलिए क्योंकि ये सोने चांदी का टुकड़ा जो है ये भी कीमत होने की सलाहियत रखता है, कल मजरूबी जैसे कि वो सोना और चांदी जिन पर मोहर लगाई गई हो। वहादा इदा कानत फी यदिल काजी, भाई ये जो इन रिश्तेदारों पर खर्च किया जाएगा ये उस सूरत में है जब ये दिरहम और दीनार काजी के कब्जे में हो, काजी के कब्जे में हो। वो गायब जो था उसने खुद अपना कुछ माल काजी के पास बतौर अमानत के रखवाया था भाई, तो अब उसमें से काजी खर्च करेगा। लेकिन अगर काजी के कब्जे में ये माल नहीं है और किसी शख्स के पास उस गायब आदमी की अमानत है या किसी शख्स के ऊपर उस गायब आदमी का देन है, उसने उस गायब आदमी का देन अदा करना है, तो फिर उनसे माल लेकर भी काजी खर्च कर सकता है। लेकिन दो शर्तें हैं, वो आदमी गायब है और उसके बीवी बच्चों पर खर्च करना है, काजी के पास तो माल नहीं उसका, लेकिन एक और आदमी के पास माल बतौर अमानत के है, या एक और आदमी के पास उस गायब आदमी का माल बतौर देन के है, तो इस सूरत में जरूरी है कि वो शख्स जिसके पास अमानत है या वो शख्स जिसके ऊपर देन है वो उस माल का भी इकरार करें और इन बीवी बच्चों का भी इकरार करें कि ये उसी गायब के बीवी बच्चे हैं। तवज्जो है, उस गायब के बीवी बच्चों का भी इकरार करें और उस माल का भी इकरार करें कि हमारे पास उसने इतना माल अमानत रखवाया है या हमारे पर उसका माल देन है। तवज्जो है, या काजी को इन चीजों का पता है, काजी को पता है कि ये उस गायब आदमी के बीवी बच्चे हैं, या काजी को पता है कि इस आदमी के पास उस गायब आदमी की अमानत है या देन है, तो फिर भी काजी फैसला कर सकता है। और अगर इन दो चीजों में से एक का इलम नहीं या दोनों का ही इलम नहीं, फिर काजी फैसला नहीं कर सकता। मसलन वो आदमी जिनके पास अमानत है या जिनके ऊपर देन है, वो अमानत या देन का तो इकरार कर रहे हैं कि हमारे पास अमानत मौजूद है उस गायब आदमी की, लेकिन वो इन बीवी बच्चों का इकरार नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम नहीं जानते ये उस आदमी के बीवी बच्चे हैं या नहीं, वो देन का इकरार कर रहे हैं और काजी को पता है ये उसी आदमी के बीवी बच्चे हैं, तो फिर भी काजी खर्च करने का हुक्म देगा। लेकिन अगर ये उसी के बीवी बच्चे हैं, इसका काजी को भी नहीं पता और वो देन या अमानत वाले को भी नहीं पता, फिर काजी खर्च करने का हुक्म नहीं दे सकता। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा इदा कानत फी यदिल काजी, और ये इन बीवी बच्चों पर खर्च करना उस वक्त होगा जब ये माल काजी के कब्जे में हो। फइन कानत वदीअतन औ दैनन, और अगर ये माल किसी आदमी के पास अमानत या देन है, युनफिकु अलैहिम, तो काजी उन पर खर्च करेगा, मीन हो मा इन दोनों मालों में से यानी अमानत या वदीअत में से, इदा कानल मुदऊ वल मदयून मुकिरैनी, उस वक्त जब वो मुदा भाई जिसके समानत रखवाई गई है, वल मदयून और वो शख्स जिस पर कर्जा है, वो जब इजा कानल मुदा वल मदयून मुकर्रैनी, जब वो मुदा और मदयून वो दोनों इकरार कर रहे हों, बिदैन वल वदीअती, देन और अमानत का, वन निकाह वन नसबी, और निकाह और नसब का, वो आदमी जिसके पास अमानत है या उस पर देन है, वो उस देन या वदीअत का भी इकरार कर रहा है और इस बात का भी इकरार कर रहा है कि ये उसी आदमी के बीवी बच्चे हैं। भाई तो कहते हैं इदा कान अल मुदऊ वल मदयून मुकर्रैन बिदैन वल वदीअती, जब मुदा और मदयून जो है वो इकरार कर रहे हों देन और वदीअत का भी, वन निकाह वन नसब, और निकाह और नसब का भी, निकाह का इकरार कर रहे हैं कि हां ये उसी आदमी की बीवी है, नसब का इकरार कर रहे हैं कि हां ये उसी आदमी के बच्चे हैं, तो देन और वदीअत का भी इकरार कर रहे हैं और इनके बीवी बच्चे होने का भी इकरार कर रहे हैं, फिर काजी इन पर खर्च करेगा। कहते हैं वहादा इदा लम यकून ना जाहिरैन इंदल काजी, ये उस वक्त है जब ये दोनों चीजें काजी के पास जाहिर ना हो। भाई इधर देखिए, अगर काजी को खुद पता है कि वो जो गायब आदमी है इसकी अमानत फला आदमी के पास मौजूद है या उस गायब आदमी का देन फुला आदमी के पास है, और काजी को यह भी पता है ये उसी गायब के बीवी बच्चे हैं, जब काजी को खुद इन दोनों चीजों का पता है, फिर उस मुदा और मदयून से किसी इकरार की जरूरत नहीं। तवज्जो है, काजी को खुद पता है कि गायब आदमी ने इस आदमी के पास अमानत रखवाई थी या इस आदमी पर गायब का कर्जा है, और काजी उस गायब के बीवी बच्चों को भी जानता है, फिर उस मदयून और मुदा से किसी इकरार की हाजत नहीं है। भाई यह माना है वहां दा इदा लम यकूना जाहिरैन इंदल काजी, और यह इकरार की हाजत उस वक्त होगी जब यह दोनों बातें काजी के पास जाहिर ना हो। फइनका ना जाहिरैन, अगर यह दोनों बातें जाहिर हैं, काजी को देन और वदीअत का भी इलम है और निकाह और नसब का भी इलम है, फला हाजत इलल इकरारी, तो कोई हाजत नहीं है इकरार की। तवज्जो है, यहां पर देखो चार चीजें जिक्र हो रही हैं, लेकिन साहिब हिदायत तस्निया की जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं। गायब आदमी का कुछ माल दूसरे आदमी के पास अमानत है या देन है, तो देन और अमानत को एक ही चीज शुमार कर लिया, यानी उस गायब आदमी का कुछ माल है किसी के पास, चाहे वो वदीअत है चाहे देन है, और दूसरी तरफ वो लोग जिन पर खर्च किया जाएगा वो बीवी हैं और बच्चे हैं, उनको भी एक ही शुमार कर लिया जिन पर खर्च किया जा रहा है। तो ये तस्निया की जमीर लौटा रहे हैं साहिब हिदाया कि काजी को इस वदीअत और देन ये एक चीज और बीवी और नसब ये दूसरी चीज, जब इन दोनों का पता हो फिर उन आदमियों से इकरार करवाने की जरूरत नहीं। ये माना है। कहते हैं वहादा इदा लम यकून ना जाहिरैन इंदल काजी, और ये इकरार की हाजत उस वक्त होगी जब ये दोनों चीजें काजी के पास जाहिर ना हो। फइनका ना जाहिरैन फला हाजत इलल इकरारी, अगर ये दोनों चीजें काजी के पास जाहिर हैं तो फिर इनके इकरार की कोई हाजत नहीं है। वइनका ना अहदुहुमा जाहिरन, और अगर इन दोनों चीजों में से एक चीज जाहिर है तो युश्तरतुल इकरारु बिमा लैसा बिज़ाहिरिन, तो शर्त होगा इकरार उस चीज का जो जाहिर नहीं है। तो जो चीज जाहिर नहीं, जिस चीज का काजी को पता नहीं, उसका इकरार करवा लेगा उन आदमियों से। तो कहते हैं वह इनकान अहदहुमा जाहिरन, और अगर इन दोनों चीजों में से एक जाहिर है यानी काजी को उसका इलम है, युश्तरतुल इकरार बिमा लैसा बिजाहिरिन, तो शर्त होगा इकरार करना उस चीज का जो जाहिर नहीं है। हादा हुवा सहीह, यही कौल सहीह है। तो कहते हैं हादा हुआ सही, यही कौल सहीह है। तो इसके लिए एहतराज किया इमाम जुफर रहमहुल्ला के कौल से, इन्होंने कहा हादा हुआ सही, यही कौल सही है, जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं नहीं, अगर ये मुदा या मद्यून इकरार भी कर लें फिर भी इनका इकरार गायब आदमी के खिलाफ हुज्जत और दलील नहीं बन सकता, लिहाजा इनके इकरार की वजह से बीवी बच्चों पर खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं सही यही है कि खर्च किया जा सकता है जब वो इकरार कर लें दोनों का, काजी को दोनों चीजों का इलम हो। आगे देखिए फइन दफा अल मुदाउ बिनफ्सी ही, भाई ये तो वो सूरत थी कि काजी के हुक्म पर या मुदा या मद्यून अब उसके बीवी बच्चों पर खर्च करेंगे जी। लेकिन अगर वो मुदा और मद्यून काजी के हुक्म के बगैर खुद ही उसके बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं तो याद रखो इस खर्च करने में वो मुतबर्रे हैं, यूं समझा जाएगा वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, लिहाजा अगर वो गायब शख्स वापस आ गया तो वो कह सकता है कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरा माल क्यों खर्च किया, तुम्हें पूरा माल देना पड़ेगा, तो उनको वो पूरा माल देना पड़ेगा। तवज्जो है। तो कहते हैं फइन दफा अल मुदउ बिनफ्सी ही, और अगर मुदा ने खुद वो माल दिया, औ मन अलैहि दैनु, या उस शख्स ने दिया जिसके ऊपर दैन था, बगैर अमर काजी, काजी के हुक्म के बगैर ही, यज़मनुल मुदउ, तो वो अमान, वो शख्स जिसके पास अमानत रखवाई गई है वो जामीन होगा, वला यबरउल मदयूनु, और इसी तरह वो कर्जदार जो है वो भी कर्ज से बरी नहीं होगा, उसे कर्ज अदा करना पड़ेगा, ले अन्नहु मा अदा इला साहिबिल हक, इसलिए क्योंकि उसने वो हक अदा नहीं किया साहिब हक को, वला इला नाइबी ही, और ना उसके नाइब यानी वकील वगैरह को, क्योंकि मुदा ने अमानत मालिक या उसके नाइब को अदा नहीं की, और मद्यून ने भी कर्जा मालिक या उसके नाइब को अदा नहीं किया, लिहाजा इनको वो अदा करना पड़ेगा। इनके पास तो अमानत रखवाई गई थी या इन पर तो कर्जा था, तो इनको विलायत नहीं थी कि वो मालिक की इजाजत के बगैर उसके घर वालों पर उसे खर्च करें। तो कहते हैं लिअन्नहु मा अद्दा इला साहिबिल हक वला इला नाइबिही, इसलिए क्योंकि उसने वो हक अदा नहीं किया साहिब हक को और ना उसके नाइब को, बिखिलाफ मा इदा दफा बि अम्रिल काजी, बखिलाफ उस सूरत के जब इन्होंने काजी के हुक्म पर यह माल दिया हो, लिअन्नल काजिया नाइबुन अन्हु, इसलिए क्योंकि काजी जो है उस गाइब की तरफ से नाइब है। व इनकान अल मुदउ वल मदयून जाहिदैन असला, भाई अगर वो साहिब वदीअत इनकार कर रहा है कि मेरे पास उस गायब आदमी ने कोई अमानत रखवाई ही नहीं, या वो मदयून इनकार कर रहा है कि मेरे ऊपर तो उस गायब आदमी का कोई दैन नहीं है, तो क्या उसके बीवी बच्चे वगैरह जो हैं ये खुसूमत कर सकते हैं? कहते हैं नहीं, ये उसके साथ खुसूमत नहीं कर सकते। भाई व इन कानल मुदउ वल मदयून जाहिदैन असला, तो अगर वो मुदा या मदयून जो है वो सिरे से माल ही का इनकार कर रहे हैं, दैन या अमानत का इनकार कर रहे हैं, या वो इस औरत के बीवी होने या इन बच्चों के औलाद होने का इनकार कर रहे हैं, तो क्या इसके ये बीवी बच्चे उसके साथ खुसूमत कर सकते हैं या नहीं? कहते हैं नहीं भाई, ये उसके साथ खुसूमत नहीं कर सकते भाई। तो कहते हैं वह इनका नल मुदउ वल मदयून जाहिदैन असला, जहद का माना है इनकार करना। तो कहते हैं वह इनका नल मुदउ वल मदयून जाहिदैन, और अगर वो शख्स जिसके पास अमानत रखवाई गई है या वो शख्स जिसके ऊपर कर्जा है अगर वो इनकार कर रहे हैं, असलन ऐ कतअन, कतई तौर पर इनकार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अमानत या हमारे ऊपर कोई दैन नहीं है, औ काना जाहिदैन ज़ौजियता वन नसबा, या वो बीवी होने और नसब का इनकार कर रहे हैं, या दूसरी सूरत वो अमानत या दैन का तो इकरार कर रहे हैं, लेकिन इस गायब के बीवी बच्चों का इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं जानते ये उसके बीवी बच्चे हैं या नहीं हैं। भाई तो कहते हैं अगर वो माल का इनकार कर रहे हैं, औकाना जाहिदैन ज़ौजियता वन नसबा, या ये बीवी होने और नसब का इनकार कर रहे हैं, लम यंतसिब अहदुम मिन मुस्तहिकिन नफकति खस्मन फी दालिका, लम यंतसिब अहदुन, तो कोई एक भी कायम नहीं होगा, मिन मुस्तहिकिन नफकति, असल में था मिन मुस्तहिकीना और नून इजाफत की वजह से गिर गया, मिन मुस्तहिकिन नफकति, वो जो नफके के मुस्तहिक हैं, कोई एक भी उनमें से कायम नहीं हो सकता, खसमन फी जालिका, इस मामले के अंदर फरीके मुखालिफ होकर। अगर वो जो मुदा या मदयून हैं वो अगर अमानत का इनकार करते हैं या वो इनके बीवी बच्चों के होने का इनकार करते हैं तो इनमें से कोई भी उनका फरीके मुखालिफ होकर खुसूमत नहीं कर सकता, ये माना है। तो अगर वो इसका इनकार करते हैं, लम यंतसिब अहदुम मिन मुस्तहिकिन नफकति, तो नफके के मुस्तहिकीन में से कोई एक भी कायम नहीं हो सकता, खसमन फी जालिका, इस चीज में फरीके मुखालिफ होकर, इनमें से कोई एक भी उसका फरीके मुखालिफ नहीं बन सकता, लिअन्नमा यद्दई लिलगाइबी, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसका ये दावा कर रहे हैं गाइब के लिए, वजह जिक्र कर रहे हैं कि ये फरीके मुखालिफ क्यों नहीं बन सकते। कहते हैं वजह ये कि बीवी बच्चे होने की वजह से इनका खर्चा आएगा, लेकिन वो खर्चा इसी अमानत या देन के अंदर होना जरूरी नहीं है, वो तो किसी भी माल से अदा किया जा सकता है। तवज्जो है, उस गायब आदमी के बीवी बच्चे उनका नफका अदा करना है, लेकिन वो नफका तो इसी अमानत के माल में से या इसी देन के माल में से देना जरूरी नहीं है, वो तो गायब आदमी के किसी भी माल में से अदा किया जा सकता है, लिहाजा वो मदयून और इस मुदा के ये फरीके मुखालिफ नहीं बन सकते। तो कहते हैं लिअन्नमा यद्दई ही लिलगाइबी, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसका ये दावा कर रहे हैं यानी बीवी और औलाद होने का, लिलगाइबी गायब के लिए, कि ये बागायब के लिए जिस चीज के यानी उसकी बीवी और औलाद होने का जो दावा कर रहे हैं, लम यतअय्यन, वो मुतअय्यन नहीं है, वो बीवी और औलाद होना मुतअय्यन नहीं है, सबबन, बतौर सबब के, लिसुबूती हकी ही, उसका हक साबित होने में, यानी उस देन और वदियात में उसका हक साबित हो जाए, वह हुआ नफका, और वह नफका है जी। तवज्जो है, यह इबारत जरा मुश्किल है, बहरहाल कहना यह चाहते हैं साहिब हिदाया कि ये बीवी बच्चों में से कोई भी फरीके मुखालिफ बनकर इस मदयून और मुदा के साथ खुसूमत नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इनका बीवी बच्चे होने की वजह से खर्चा लाजिम आएगा, तो इनका गायब के बीवी बच्चे होना यह मुतअय्यन नहीं है बतौर सबब के कि इसी माल में से इनका खर्चा आएगा, बल्कि इनका खर्चा तो उस गायब के दूसरे माल में से भी अदा किया जा सकता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्नमा यद्दई ही लिलगाइबी, इसलिए क्योंकि जिस चीज का ये दावा कर रहे हैं गायब के लिए कि ये उसके बीवी बच्चे हैं, तो ये इनका बीवी बच्चे होना, लम यतअय्यन सबबन लिसुबूति हकीही, ये बतौर सबब के मुतअय्यन नहीं है इनके हक के साबित होने के लिए, वह हुआ नफकतु, और इनका हक क्या है, वो इनका नफका है, उसके लिए ये बतौर सबब के मुतअय्यन नहीं है, लिअन्नहा कमा तजिबु फी हादल माली, इसलिए क्योंकि जिस तरह ये नफका जो है इस माल के अंदर वाजिब हो सकता है, तजिबु फी माल इन आखरा लिल मफकूदी, तो ये उस गुमशुदा आदमी के दूसरे माल में भी वाजिब हो सकता है, तो इसी माल के अंदर उसका मुतअय्यन होना साबित नहीं हो सकता। आगे देखिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वला युफर्रिकु बैनहू व बैन इम्रअतिही, गायब आदमी और उसकी बीवी के दरमियान क्या काजी जुदाई करवाएगा या नहीं, तो आपको बतलाएंगे भाई कि काजी गायब आदमी और उसकी बीवी में जुदाई नहीं करवाएगा, यहां तक कि इतने साल गुजर जाएं कि जब यकीन हो जाए कि वो आदमी मर चुका होगा, तो फिर काजी जुदाई का फैसला करेगा और फिर उसके बाद वो औरत इद्दत गुजारेगी और फिर उसके बाद वो आगे निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है। तवज्जो है। और कितनी उम्र में उसके मरने का यकीन होगा तो आगे आपको बतलाएंगे, जब उस आदमी के तमाम हम उम्र मर जाएं। जब तमाम हम उम्र मर गए तो जाहिर यही है वो भी मर गया होगा, लिहाजा अब निकाह के टूटने का हुक्म लगाया जाएगा। जबकि बाज रिवायात में है 100 साल, यहां तक कि इस आदमी की उम्र 100 साल तक पहुंच जाए, और 100 साल तक तो कम ही कोई पहुंचता है, तो अब काजी फैसला करेगा उस आदमी के मरने का। और बाज रिवायात में है कि 90 साल जब उस आदमी की उम्र हो जाए तो फिर अब मालूम हुआ, तो जाहिर यही है लोगों की उम्र इतनी नहीं होती, तो फिर अब उस आदमी की भी मौत का फैसला कर देगा और उसके बाद उसकी बीवी जो है आगे निकाह कर सकती है। तो ये अहनाफ के मुश्किल मसाइल में से है भाई, कि जहां पर खावंद अगर गुम हो गया है, ना उसकी जगह का पता है ना जिंदगी और मौत का पता है, तो वो औरत तमाम जिंदगी बैठी रहेगी, वो आगे निकाह नहीं कर सकती भाई। अल्बत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गायब हो जाए और उसका कुछ अता पता मालूम नहीं है, तो फिर जब 4 साल गुजर जाएं तो उसके बाद फिर काजी इनमें जुदाई का फैसला करवा देगा, और उसके बाद फिर औरत इद्दत वफात गुजारेगी और फिर उसके बाद वो जहां चाहे निकाह कर ले। और आजकल अहनाफ भी इसी पर फतवा देते हैं, अहनाफ भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह के कौल पर ही फतवा देते हैं जरूरत और हाजत की वजह से। देखिए भाई, काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वला युफर्रिकु बैनहु व बैन इमरातिही, और काजी जुदाई नहीं करवा सकता उस गायब आदमी और उसकी बीवी के दरमियान। व काल मालिक रहमहुल्लाह तआला, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इदा मजा अरबाउ सिनीना, कि जब 4 साल गुजर जाए, युफर्रिकुल काजी बैनहु व बैन इमरातिही, तो काजी जुदाई करवा देगा उस गायब आदमी और उसकी बीवी के दरमियान। व तद्दु इद्दत अल वफाती, और वह औरत वफात की इद्दत गुजारेगी, सुम्मा तज़व्वजु मन शाअत, फिर उसके बाद वो निकाह कर लेगी जिससे वो चाहे। लिअन्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हाकदा कजा, इसलिए क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी तरह फैसला फरमाया था। फिल्लदी इस्तहवाहुल जिन्नु बिल मदीनती, इस्तहवा यस्तहवी के माने हैं किसी को ताबे फरमान बना लेना, किसी को ताबे फरमान बना लेना, यानी किसी को काबू कर लेना। तो कहते हैं इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फैसला फरमाया था, फिल लदी इस्तहवाहुल जिन्नु बिल मदीनती, जिसको जिन्नों ने ताबे फरमान बना लिया था मदीना में, यानी जिसको जिन्नों ने काबू कर लिया था भाई। ये रिवायात में आता है भाई कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक औरत आई और उसने कहा कि मेरे खावन ईशा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले और फिर उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से पूछा तो लोगों ने भी कहा कि वाकई ऐसा ही है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से कहा कि तुम 4 साल इंतजार करो। चुनाचे वो 4 साल तक इंतजार करती रही। उसके बाद फिर वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि हां अभी तक इसके खावंद का कोई अता पता नहीं है भाई। तो फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके दरमियान जुदाई करवा दी और फिर इस औरत ने कहीं और निकाह कर लिया भाई। और फिर कहते हैं बाद में कुछ अरसे के बाद वो आदमी दोबारा वापस आ गया और उसने कहा कि मुझे जिन्नात उठाकर ले गए थे भाई। और फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उस आदमी को इख्तियार दिया कि वो उस बीवी को लेना चाहता है या उसका महर अदा कर दे अगर वो उस बीवी को वापस नहीं लेना चाहता। बात समझ में आ गई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह इसी वाके को बतौर दलील के जिक्र करते हैं। तो कहते हैं लिअन्ना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हाकदा कजा, इसलिए क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ऐसा ही फैसला फरमाया था। फिल लदी इस्तहवाहुल जिन्नु बिल मदीनती, उस शख्स के बारे में कि जिसको जिन्हों ने काबू कर लिया था मदीना में, यूं कहें जिसको जिन्होंने ताबे फरमान बना लिया था मदीना में। वह कफा भी इमामन, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु काफी है बतौर इमाम के। ये किसकी दलील चल रही है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह की, कहते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो बतौर इमाम होने के काफी हैं, यानी हम उनकी इक्तिदा करते हैं। वली अन्नहु मना हक्कहा बिल गैबती, यहां से साहिब हिदायत इमाम मालिक रहमतुल्लाह की अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वजह यह है कि खावंद ने बीवी का हक रोक लिया है, खावंद ने बीवी का हक रोक लिया है, इसलिए क्योंकि सोहबत के अंदर बीवी का भी हक होता है, तो खावंद ने बीवी के हक को रोक लिया है तो काजी उनके दरमियान जुदाई करवा देगा। जैसे वो शख्स जो ईला कर लेता है या वो शख्स जो इनीन होता है, ईला आप पढ़ चुके हैं कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी के पास चार माह तक न जाने की कसम खा ले तो इसको ईला कहते हैं, चार माह या इससे ज्यादा की कसम खा ले, तो ये शख्स अगर इस चार माह के दौरान बीवी से सोहबत कर ले तो इस पर सिर्फ कसम का कफारा आएगा और बीवी बच जाएगी, लेकिन अगर चार महीने गुजर गए और इसने बीवी से सोहबत न की तो बीवी तलाक बाइन के साथ इससे जुदा हो जाएगी और फिर बीवी जहां निकाह करना चाहे कर सकती है इद्दत के बाद। भाई बात समझ में आ गई, तो यह है ईला। और एक है इनीन, भाई इनीन ना मर्द को कहते हैं जो बीवी के साथ सोहबत पर कादिर ना हो, तो अगर कोई शख्स इनीन है और बीवी ने आकर काजी के पास मुकदमा कर दिया तो काजी उस खावंद को एक साल की मोहलत देगा, अगर एक साल के अंदर उस शख्स ने अपना इलाज करवा लिया और वो बीवी के साथ सोहबत पर कादिर हो गया तो फिर तो काजी इनको इसी तरह रहने देगा, वरना काजी इन दोनों के दरमियान जुदाई करवा देगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह ईला करने वाले ने बीवी का हक रोक लिया तो शरीयत ने चार माह के बाद जुदाई का हुक्म दे दिया कि बीवी खावन से जुदा हो गई। और जैसे इनीन ने बीवी का हक रोक लिया है यानी वो बीवी से सोहबत पर कादिर नहीं, तो वहां पर भी एक साल के बाद काजी जुदाई करवा देता है। तो लिहाजा हमने ईला वाले से अदद ले लिया, वहां चार महीने थे तो वहां से हमने चार का अदद ले लिया, और इनीन को काजी एक साल की मोहलत देता है तो उससे हमने साल ले लिया, तो हमने चार साल का हुक्म लगा दिया। अगर कोई शख्स गायब हो गया है तो बीवी चार साल इंतजार करे और उसके बाद फिर काजी जुदाई का फैसला कर दे। तो कहते हैं वली अन्नहु मना हक्कहा बिल गैबती, और इसलिए क्योंकि वो शख्स जो गायब हुआ है उसने बीवी का हक रोक लिया है गायब होने की वजह से, फयुफर्रिकुल काजी बैनहुमा, तो काजी इन दोनों में जुदाई करवा देगा, बाद मा मजा मुद्दतुन, बाद उसके के जब मुद्दत गुजर जाए यानी चार साल, एतबार बिल ईला इवल उन्नति, कियास करते हुए ईला पर, वल उन्नति और इनीन होने पर, व बाद एतबारी और इस एतबार के बाद यानी ईला और इनीन पर कियास करने के बाद, अखदल मिकदार अमीन हुमा, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने ये मिकदार इन दोनों से ले ली, ये चार साल वाली मिकदार इन दोनों पर जब कियास किया तो इन दोनों से ये मिकदार ले ली चार साल वाली। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वबाद हाद अल एतबारी और इस कियास करने के बाद, अखजल मिकदार मिन हुमा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इन दोनों से ये चार साल वाली मिकदार ले ली, अल अरबा मिन अल ईलाई, चार का अदद ले लिया ईला से, व सीनी न मिन अल उन्नति और साल जो है वो नीन होने से ले लिए, अमलम बिशबहैनी, अमल करते हुए दोनों मुशाबहतों पर, कि इस मफकूत की मुशाबहत है ईला वाले के साथ भी और इनीन के साथ भी, के दोनों ने बीवी के हक को रोका है। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना और हमारी दलील जो है कौलुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इमरातिल मफकूदी, हुजूर अलैहि सलाम का कौल है जो आपने एक गुमशुदा आदमी की बीवी के बारे में फरमाया, हुजूर ने फरमाया इन नहमरअतुहू हत्ता या अतिया हल बयानू, इन नहमरअतुहू कि ये उसी शख्स की बीवी है, हत्ता या अतिया हल बयानू, यहां तक कि इसके पास बयान आ जाए। एक आदमी गायब हो गया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी बीवी के बारे में फरमाया इन हमर अतुहु कि ये उसी शख्स की बीवी है, हत्ता या अतिया हल बयानु, यहां तक कि इसके पास बयान आ जाए, यानी वजाहत आ जाए, यानी खावंद की मौत का पता चल जाए या खावंद की तरफ से तलाक देने का पता चल जाए। भाई तो कहते हैं हता यातिया हल बयानु, यहां तक कि इसके पास बयान आ जाए। व कौल अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फीहा, और नीज हमारी दलील जो है इसी मफकूत की बीवी के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हिया मराअतुन, कि ये एक ऐसी औरत है उबतुलियत, जो आजमाइश में डाल दी गई है। हिया मराअतुन उबतुलियत, हिया मराअतुन उबतुलियत, कि ऐसी औरत है जिसको आजमाइश में डाल दिया गया है। फल तस्बिर हता यस्तबीन मौतुन औ तलाकुन, फल तस्बिर, पस चाहिए कि यह सबर करे। हता यस्तबीन मौतुन औ तलाकुन, यहां तक के वाजह हो जाए मौत या तलाक। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि ये उसी शख्स की बीवी है जब तक इसके पास बयान ना आ जाए। और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने भी इसी मसले के अंदर फरमाया कि ये औरत आजमाइश में डाल दी गई है, अब इसे सबर करना पड़ेगा यहां तक कि इसे मौत या तलाक का पता चल जाए। भाई आगे देखिए, खराजा बयान लिल बयान इल मजकूर फिल मरफू। भाई मैंने आपको बतलाया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल हो तो इसको हदीस मरफू कहते हैं, और सहाबी का कौल हो तो इसको हदीस मौकूफ कहते हैं, और ताबाई का कौल हो तो उसको हदीस मकतू कहते हैं। तो हदीस मरफू के अंदर बयान का लफ्ज आया था, इन हमरातुहु हत्ता यातिया हल बयान, यहां तक कि इसके पास बयान आ जाए। अब इस बयान से क्या मुराद है, हदीस के अंदर कोई वजाहत नहीं, हदीस मरफू में कोई वजाहत नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जो बयान का लफ्ज जिक्र फरमाया ये मुजमल है, इसके अंदर इजमाल है, तफसील नहीं। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो कौल है वो इसके लिए बयान है। मुजमल के लिए क्या चाहिए, बयान चाहिए, उसकी वजाहत चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल में इजमाल था, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल में उसकी तफसील आ गई, ये उसके लिए बयान है। भाई तो कहते हैं खराजा बयानन, तो ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल बयान होकर वाकई हुआ है। लिल बयान इल मजकूर फिल मरफू, वो जो बयान का लफ्ज मजकूर था मरफू हदीस के अंदर। वली अन निकाह, यहां से अकली दलील दे रहे हैं, अहनाफ की दलील चल रही है तो पहले नकली दलील जिक्र की, अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया। कहते हैं वली अन निकाह उरिफा सुबूतुहु, कहते हैं इसलिए क्योंकि निकाह जो है उरिफा सुबूतुहु, उसका साबित होना तो मारूफ है, उसके साबित होने को तो जाना गया है, यानी सबको पता है इस गायब आदमी का इस औरत से निकाह हुआ था, यानी निकाह तो यकीनी चीज है, निकाह तो यकीनी चीज है, और गायब होना उसकी वजह से निकाह नहीं टूटता। भई एक आदमी एक दो साल तीन साल गायब रहे और फिर वापस आ जाए तो उसकी वजह से देखो निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। मालूम हुआ गायब होना ये इससे जुदाई साबित नहीं होती भाई, और गायब होने के दौरान मौत का सिर्फ एक एहतमाल है, कोई यकीनी चीज नहीं, लिहाजा मौत के सिर्फ एहतमाल की वजह से जुदाई साबित नहीं की जा सकती, क्योंकि मौत के होने में शक है और निकाह का होना यकीनी है, और फिका का जाब्ता है अल यकीन ला यजूलु इल्ला बिल यकीन, यकीन यकीन ही के जरिए जायल हो सकता है, यानी यकीनी चीज के जरिए ही खत्म हो सकती है, यकीन जो है वो शक के जरिए बातिल नहीं हो सकता। तो निकाह का होना यकीनी और उस गायब का मरना वो उसमें शक है, तो शक के जरिए वो यकीनी चीज यानी निकाह को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। तो कहते हैं वली अन निकाह उरिफा सुबूतुहु, और इसलिए क्योंकि निकाह जो है इसके साबित होने को जाना गया है, यानी सबको मालूम है इस गायब आदमी का इस औरत से निकाह हुआ था। वल गैबतु ला तूजिबुल फुरकाता, और गायब हो जाना ये तो जुदाई को साबित नहीं करता। वल मौतु फी हय्यज़िल इहतिमाली, और मौत भी जो है इहतिमाल के महल में है, हय्यज़ का माना महल और जगह। वल मौत फी हय्यज़िल इहतिमाली, और मौत जो है वो इहतिमाल के महल में है, यानी मौत का तो सिर्फ इहतिमाल है, कोई यकीनी नहीं, वो गायब आदमी की मौत का सिर्फ इहतिमाल है। तो कहते हैं वल मौत फी हय्यज़िल इहतिमाली, और मौत तो इहतिमाल के महल में है। फला युज़ाल निकाह बिश्शक की, तो लिहाजा निकाह जायल नहीं हो सकता शक की वजह से। वह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह की दलील का। उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले को जिक्र फरमाया था बतौर दलील के कि उन्होंने चार साल के बाद जुदाई का फैसला किया था। कहते हैं वह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रजअ इला कौल अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रुजू फरमा लिया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल की तरफ। वला मुअतबर बिल इलाई, यहां से उनके कियास का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने इस मफकूद के मसले को कियास किया था इला और इनीन होने पर, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि आप गायब होने को ईला पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ईला जो था यह जाहिलियत में फौरी तलाक शुमार होती थी। अगर कोई शख्स यह कसम खा लेता कि वल्लाह मैं चार माह या चार माह से ज्यादा तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, तो उसको उसी वक्त तलाक शुमार किया जाता था। शरीयत ने यह हुक्म बरकरार रखा, शरीयत में भी यह तलाक ही है, अलबत्ता शरीयत ने मुद्दत मुकर्रर कर दी कि फौरी तलाक नहीं है, चार महीने के बाद तलाक हो जाएगी अगर इसने इस कसम को न तोड़ा। तो जाहिलियत में यह ईला तलाक मुअज्जल था और शरीयत ने इसको तलाक मुअज्जल बना दिया। तो ईला तो तलाक के माना में है और किसी आदमी का गायब हो जाना यह तो तलाक के माना में किसी भी एतबार से नहीं है, लिहाजा आप गायब होने को ईला पर कियास नहीं कर सकते। तो कहते हैं वला मुअतबर बिल ईला, और ईला पर कियास नहीं किया जा सकता। लिअन्नहु काना तलाकम मुअज्जला, इसलिए क्योंकि ईला जाहिलियत के अंदर तलाक मुअज्जल था, यानी फौरी तलाक शुमार होता था। फातु बिरा फी शरई मुअज्जला, तो शरीयत में इसको तलाक मुअज्जल शुमार किया गया कि ये मुद्दत के बाद तलाक होगी। फका नमू जिबन लिल फुरकती, तो ईला जो है ये जुदाई को साबित करता है, ये तलाक के हुक्म में है, लेकिन गायब होना ये तो तलाक के हुक्म में नहीं है भाई। वला बिल उन्नती, और आप इस गायब होने को इनीन होने पर भी कियास नहीं कर सकते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने गायब होने को कियास किया था इनीन पर, हम कहते हैं नहीं, जो शख्स गायब है वहां वापसी की उम्मीद है, क्योंकि बाज औकात लोग गायब होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐनीन पर जब एक साल गुजर जाए और एक आदमी ठीक ना हो तो फिर कम ही ऐसा होता है कि वह आदमी दोबारा ठीक हो सके भाई। तो कहते हैं वला बिल उन्नति, और इस गायब होने को आप ऐनीन होने पर भी कियास नहीं कर सकते। लिअन्नल गैबत तुअक्किबुल औबता या तुअक्किबुल औबता, लिअन्नल गैबता, इसलिए क्योंकि गायब होना तुअक्किबुल औबता, आबा यऊबु औबन और औबतन का माना है वापस लौटना। तो कहते हैं लिअन्नल गैबता तुअक्किबुल औबता, इसलिए क्योंकि गायब होना यह अपने पीछे वापस लौटने को लाता है। गायब होने के बाद वापसी होती है, यानी वापसी की उम्मीद होती है और लोग वापस आ जाते हैं, तो ये आप चाहे आकबा युअक्किबु बाबे इफ़ाल से पढ़ लें या आकबा युअक्किबु ताकी बाबे तफ़ईल से पढ़ लें भाई। कहते हैं लिअन्नल गैबता तुअक्किबुल औबता, इसलिए क्योंकि गायब होना अपने पीछे वापस लौटने को लाता है। वल उन्नतु कल्लमा तन्हल्लु, और इनीन होना बहुत कम ठीक होता है। बाद इस्तिमरारिहा सनतन, एक साल तक मुसलसल रहने के बाद, अगर इनीन होने की बीमारी पूरा साल रही फिर उसके बाद कम ही कोई ठीक होता है भाई। तो इनहल्ला या इनहल्लु के माने है खुल जाना, यहां मुराद है ठीक हो जाना, यानी मरज का दूर हो जाना। तो कहते हैं वल उन्नतु कल्लमा तन्हल्लु, और इनीन होना बहुत कम दूर होता है। बाद इस्तिमरारिहा सनतन, बाद इसके कि एक साल तक ये मुसलसल रहे। आगे देखिए काल व ईदा तम लहू मी अतु वईशरून सनतन, अब वो अहनाफ के अकवाल आ गए। इंदल अहनाफ गायब आदमी और उसकी बीवी के दरमियान काजी जुदाई का फैसला नहीं कर सकता। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व ईदा तम लहू मी अतु वईशरून सनतन, और जब उस आदमी के 120 साल पूरे हो जाएं, मी यौ मी वुलिदा, उस दिन से जब वो पैदा हुआ था, यानी उसकी पैदाइश से 120 साल पूरे हो जाए, यानी उसकी उम्र 120 साल हो जाए, हकम ना भी मौती ही, तो अब हम उसकी मौत का फैसला करेंगे। قال رضی اللہ تعالی عنہ, اس سے مراد صاحب ہدایہ ہیں. قال رضی اللہ تعالی عنہ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں, وہذہ روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, کہ یہ جو متن کے اندر آیا یہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے امام صاحب سے. کیا فرماتے ہیں کہ مفقود کی زندگی جب 120 سال کو پہنچ جائے تو پھر اس وقت اس کی موت کا حکم لگایا جائے گا. تو کہتے ہیں وہادہی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور یہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے امام صاحب سے. وفی ظاہر المذہبی, اور ظاہر مذہب میں, یقدر بموت الاقرانی, کہ اس کو مقرر کیا جائے گا یا اس کا اندازہ لگایا جائے گا بموت الاقرانی, ہم عمروں کی موت سے. وہ جو مفقود ہے جب اس کے سارے ہم عمر مر جائیں تو اب اس مفقود پر بھی موت کا حکم لگایا جائے گا, کیونکہ عادتاً ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کسی کے ہم عمر مر جائیں اور وہ زندہ رہے, تو لہذا اس پر بھی موت کا حکم لگایا جائے گا. تو کہتے ہیں وفی ظاہر المذہبی, اور ظاہر مذہب میں, یقدر بموت الاقرانی, کہ اس کا اندازہ لگایا جائے گا اس کے ہم عمروں کی موت کے ساتھ. وفی المروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ, اب یہ تیسرا قول آ گیا, وفی المروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ, اور وہ جو روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے, بمئات سنتین, اس کا اندازہ 100 سال کے ساتھ لگایا جائے گا. وقدرہ بعضہم بتسعین, اور بعضوں نے اس کا اندازہ 90 سال کے ساتھ لگایا ہے. بعضوں نے اس کا اندازہ 90 سال کا لگایا ہے کہ 90 سال کو جب اس مفقود کی عمر پہنچ جائے تو تب اس پر موت کا حکم لگایا جائے گا. والاقیس الا یقدر بشیئن, والاقیس اس میں تفضیل ہے بھائی, اس میں تفضیل یاد رکھو, یہ جو اس میں تفضیل آتا ہے یہ اس میں فاعل سے آتا ہے. اضرب کیا معنی؟ زیادہ ضارب, کسی کے مقابلے میں زیادہ ضارب, دیکھو ضارب اس میں فاعل ہے. یا اسی طرح اسمع, یعنی زیادہ سامع, زیادہ سننے والا, توجہ ہے. لیکن بہت ہی کم اور نادر ہوتا ہے کہ اس میں مفعول سے اس میں تفضیل آ جائے, جیسے اشہر, اشہر یاد رکھو یہ اس میں فاعل سے نہیں آیا بلکہ یہ اس میں مفعول سے آیا ہے. اشہر کا معنی زیادہ مشہور, بھائی دیکھو مشہور مفعول, دیکھو یہ اس میں مفعول سے آیا ہے. تو اس میں تفصیل عام طور پر اس میں فاعل سے آتا ہے, اس کے اندر زیادتی کو بیان کرتا ہے کسی کے مقابلے میں, اور اس میں مفعول سے اس میں تفصیل آ جائے ایسا نہایت نادر اور شاذ ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال ذکر کر دی, اشہر بمانے زیادہ مشہور کے. اسی طرح یہ اقیس, یہ اس میں تفصیل ہے اور یہ بھی اس میں مفعول سے آیا ہے, یعنی مقیس سے. اس میں مفعول, جیسے باع یبیعو سے اس میں مفعول کیا آتا ہے؟ مبیعن, توجہ ہے. اسی طرح قاس یقیس سے مقیسن, تو یہ اس سے اس میں تفضیل ہے بھائی. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والاقیس الا یقدر بشیئن, اور بہتر قیاس یہ ہے, ترجمہ کیا کریں, والاقیس بہتر قیاس یہ ہے, والاقیس الا یقدر بشیئن, اور بہتر قیاس یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا اندازہ نہ لگایا جائے, یعنی احوال کے مطابق دیکھا جائے. احوال کے مطابق دیکھا جائے, کوئی مقرر نہ کیا جائے 100 سال یا 90 سال, بس جس زمانے کے لوگ ہیں اس زمانے کی عمر کا اعتبار کر لیا جائے گا. بھائی جیسے آج کل بھائی عام طور پر عام لوگوں کی عمر 70 سے 80 سال تک ہوتی ہے بھائی, اس سے زیادہ عمر کم ہی کسی کی ہوتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں والاقیس الا یقدر بشیئن, اور بہتر قیاس یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ مقرر نہ کیا جائے. والارفق ان یقدر بتسعین, ارفق بھائی رفق ان سے ہے, رفق کہتے ہیں نرمی کرنا, رفق یرفق کا معنی ہے نرمی کرنا. تو کہتے ہیں والارفق, اور زیادہ نرمی جو ہے وہ اس میں ہے, ان یقدر بتسعین, کہ اس کا اندازہ لگایا جائے 90 سال کے ساتھ. اور نیچے میری کتاب میں بین السطور ہے, وعلیہ الفتوی, اور اسی پر फतवा है भाई। अलबत्ता मैंने बताया आजकल अहनाफ जरूरत और हाजत की वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह के कौल पर फतवा देते हैं। अगर एक शख्स गायब हो गया है और उसका कुछ अता पता मालूम नहीं तो 4 साल बाद उसकी बीवी का उससे जुदाई का फैसला कर दिया जाएगा। आगे देखिए, वह ईदा हकम अभी मौती ही, और जब काजी उस गायब शख्स की मौत का फैसला कर दे, इअतदती मरा अतुहु इद्दत अल वफाती, तो उसकी बीवी जो है वफात की इद्दत गुजारेगी, मिन जालिकल वक्ती, उस वक्त से जब काजी फैसला करेगा उसके बाद ये वफात की इद्दत गुजारेगी 4 महीने और 10 दिन, और उसके बाद फिर वो जहां चाहे निकाह कर सकती है भाई। आगे देखिए, वक़सम मालहू बैन वरसतिहिल मौजूदीन फी ज़ालिकल वक्ती, भाई याद रखो ये जो मफकूद है ये अपने हक में जिंदा शुमार होगा और दूसरों के हक में मुर्दा शुमार होगा। ये अहम ज़ाब्ता है, मफकूद अपने हक में जिंदा शुमार और दूसरों के हक में मुर्दा शुमार होगा, लिहाजा इसकी जायदाद तकसीम नहीं करेंगे, उसमें वरासत जारी नहीं करेंगे, यह जिंदा शुमार होगा जब तक काजी फैसला नहीं कर देता, और दूसरों के हक में यह मुर्दा शुमार होगा, लिहाजा यह दूसरों का वारिस नहीं बनेगा भाई। इसके रिश्तेदारों में से अगर कोई मर जाता है तो ये वारिस नहीं बनेगा भाई। आगे देखिए मसाइल आएंगे, साहिब हिदायत और वजाहत फरमाएंगे। तो कहते हैं वकुसीमा मालुहु बैन वरसतिहिल मौजूदीन फी जालिकल वक्ती, और इस गायब आदमी का माल तकसीम कर दिया जाएगा, बैन वरसतिहिल मौजूदीन फी जालिकल वक्ती, उसके उन वारिसों के अंदर जो उस वक्त मौजूद हों, जब इसकी मौत का फैसला किया गया उस वक्त इसके जो वारिस जिंदा हैं वो वारिस बनेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वारिस वो आदमी बनता है जो मूरिस की मौत के वक्त जिंदा हो, तो जब काजी ने इस गायब आदमी की मौत का फैसला किया अब जो इसके वारिस जिंदा है सिर्फ वो वारिस बनेंगे भाई जी। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वक़ुसीमा मालुहू बैन वरसती ही, और तकसीम कर दिया जाएगा इस गायब आदमी का माल उसके वारिसों में, अल मौजूदीन फी ज़ालिकल वक़्ती, जो उस वक्त यानी काजी के फैसले के वक्त मौजूद हैं यानी जिंदा हैं, का अन्नहु मात फी ज़ालिकल वक़्ती, गोया के मफकूद उसी वक्त मरा है, मुआयनतन बैतबार मुशाहदे के, यानी जैसे एक आदमी की मौत का आदमी खुद मुशाहिदा करता है, तो यहां भी इसको इसी तरह समझा जाएगा जैसे हकीकतन इसकी मौत अभी हुई है। कअन्नहु मात फी ज़ालिकल वक्त मुआयनतन, तो गोया कि यह मफकूद जो है उसी काजी के फैसले के वक्त मरा है, मुआयनतन बैतबार मुशाहदे के, इदिल हुक्मी मुतबरुम बिल हकीकी, इसलिए क्योंकि मौत हुक्मी जो है उसको कियास किया जाता है मौत हकीकी पर। ये काजी का फैसला मौत हुक्मी है, लेकिन मौत हुक्मी को भी किस पर कयास करते हैं, मौत हकीकी पर। यह माना है इदिल हुक्मी यो मोतबरुम बिल हकीकी, ये इसलिए क्योंकि मौत हुक्मी को कयास किया जाता है मौत हकीकी पर। व मम्मा तकबल जालिका लम यरिस मिनहु, और जो कोई इससे पहले मर गया लम यरिस मिनहु, वो इस मफकूद से वारिस नहीं बनेगा। काजी के फैसले से पहले अगर मफकूद के वारिसों में से कोई मर जाए तो यूं समझेंगे कि मफकूद की जिंदगी में ही वो मर गया, और जब मफकूद की जिंदगी में मर गया है तो उसको माल वरासत नहीं मिलेगा। तो कहते हैं वह मम्मा तकबल जालिका, और मफकूद के वारिसों में से जो कोई इससे पहले मर जाए, लम यरिस मिनहू, तो वो वारिस नहीं बनेगा इस मफकूद से, लिअन्नहु लम युहकम बिमौती ही फीहा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर मफकूद की मौत का फैसला नहीं किया गया था। फसारा कमा इदा कानत हयातुहु मालूमतन, तो ये इसी तरह हो गया जैसे कि उसकी जिंदगी मालूम थी, जैसे कि उसकी जिंदगी मालूम थी, लिहाजा इस दौरान काजी के फैसले से पहले कोई मरा है तो वो यूं समझेंगे मफकूद की जिंदगी में मरा है, और जब मफकूद की जिंदगी में मरा है तो वो इसके वारिस नहीं बनेंगे भाई। आगे देखिए, वला यरिसुल मफकूद अहदन मात फी हाल फकदिही, वला यरिसुल मफकूद अहदन, और यह मफकूद खुद भी किसी का वारिस नहीं बनेगा, मात फी हाल फकदिही, जो इसके गायब होने की हालत में मर गया, मफकूद के गायब होने की हालत में जो मर गया, मफकूद उसका वारिस नहीं बनेगा, यानी उस माल का मालिक नहीं बनेगा। हां अलबत्ता माल इसके लिए रोक कर रखा जाएगा कि शायद ये वापस आ जाए, भाई इसके लिए माल रोक कर रखा जाएगा, तो बाकी वारिस जो हैं वो तो अपने हिस्से के मालिक बन जाएंगे, लेकिन ये अपने मूरिस के माल में से अपनी मीरास का मालिक नहीं बनेगा। हां वो माल इसके लिए रोक कर रखा जाएगा कि शायद ये वापस आ जाए। बात समझ में आ गई? तो ये माना है वला यरिसुल मफकूद अहदन, और मफकूद किसी ऐसे रिश्तेदार का वारिस नहीं बनेगा, मा तफी हाल फकदी ही, कि जो इस मफकूद के गायब होने की हालत में मर गया हो, लिअन्न बकाअहु हय्यन फी ज़ालिकल वक्ती, लिअन्न बकाअहु हय्यन, इसलिए क्योंकि मफकूद का जिंदा होकर बाकी रहना, फी ज़ालिकल वक्ती, उस वक्त में, बिस्तेसहाबिल हाल, वो इस्तेसहाब हाल से था, इस्तेसहाब हाल, इस्तेसहाब भाई ये मुसाहबत से है, यानी किसी का साथी होना, इस्तेसहाब हाल कहते हैं, इबका उ माकाना अला माकाना, इबका उ माकाना अला माकाना, यानी एक चीज को बाकी रखना उसी हालत पर जिस हालत पर वो माजी में थी, इबका उ माकाना अला माकाना, एक चीज को बाकी रखना उसी वसफ पर जिस वसफ पर वो माजी के अंदर था। भाई मसलन देखो, मिसाल से वजाहत होगी, जंगल के अंदर एक शख्स जा रहा है, अब उसको वुजू की हाजत पेश आ गई, और तो कोई पानी वगैरह नहीं, कोई बस्ती नहीं, जंगल में एक जगह कुछ पानी खड़ा हुआ है, अब उसके अंदर पत्ते वगैरह तिनके तो पड़े हुए हैं, लेकिन मालूम नहीं ये पानी पाक है या पाक नहीं, तो याद रखो इस सूरत में फुकहा फरमाते हैं इस्तेसहाब हाल को दलील बनाया जाएगा और पानी को पाक करार दिया जाएगा। इस्तेसहाब हाल को दलील बनाया जाएगा, और इस्तेसहाब हाल किसे कहते हैं, इबका उ माकाना अला माकाना, बल्कि और आसान लफ्जों में यूं समझो, इस्तेसहाब के अंदर सीन तलब के लिए है, मुसाहबत को तलब करना, साथी बनने को तलब करना, यानी हाल को आप माजी का साथी बना देते हैं, एक चीज पर हाल के अंदर आप वही हुक्म लगा देते हैं जो माजी के अंदर था, तो आपने हाल को साथी बना दिया, किसका, माजी का, माजी में जो हुक्म साबित था वही हुक्म आपने इस जमाने हाल में भी उस पर लगा दिया। आप देखो ये जो जंगल के अंदर पानी था, ये पानी कहां से आया, ये बारिश का पानी है भाई, और बारिश का पानी तो पाक होता है, मालूम हुआ जिस वक्त ये पानी जमा हुआ था उस वक्त ये पाक पानी था, तो जब उस वक्त पाक था तो आज भी इसको पाक करार दिया जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इस्तेसहाब हाल, यानी हाल को हमने माजी का साथी बना दिया, हाल पर भी वही हुक्म लगा दिया जो माजी के अंदर इस पानी का हुक्म था, माजी के अंदर यह पानी पाक था क्योंकि बारिश का पानी था, और आज भी इस पर यही हुक्म लगा दिया, इसको क्या कहते हैं, इस्तेसहाब हाल, इबका उ माकाना अला माकाना, एक चीज को बाकी रखना उसी वसफ पर जिस वसफ पर वह माजी के अंदर था। भाई और याद रखो ये जो इस्तेसहाब हाल है ये दफा की दलील तो बन सकता है, इस बात की दलील नहीं बन सकता, ये इस्तेसहाब हाल दफा की दलील तो बन सकता है, इस बात की दलील नहीं। देखो यहां पर भी इस पानी के नजस होने को दफा कर दिया, तो लिहाजा इस्तेसहाब हाल जो है वो दफा की दलील तो बन सकता है, वो किसी हुक्म को आने ना दे, जैसे यहां पर पानी के नजस होने का हुक्म नहीं आया, तो इस्तेसहाब हाल किसी हुक्म को रोकने के लिए तो दलील बन सकता है, लेकिन किसी चीज के इस बात के लिए दलील नहीं बन सकता। तवज्जो है, बात चल रही थी कि मफकूद के गायब होने के दौरान उसके जो रिश्तेदार मर रहे हैं ये उनका वारिस नहीं बनेगा। भाई क्यों नहीं वारिस बनेगा, कहते हैं ये जो गायब आदमी है इसको हमने अभी भी जिंदा शुमार किया है, लेकिन किस दलील के जरिए, इस्तेसहाब हाल के जरिए, कि जब ये गायब हुआ था तब तो जिंदा था, आज भी यूं समझो ये जिंदा है, और इस्तेसहाब हाल दफा की दलील तो बन सकता है, चुनांचे इस्तेसहाब हाल इसके वारिसों को नहीं आने देगा, इसका माल रोक कर रखेंगे, इसके वारिसों को नहीं देंगे। इस्तेसहाब हाल दफा की दलील बन गया, इसके माल में वरासत को वो जारी नहीं होने दे रहा, लेकिन खुद ये किसी दूसरे का वारिस बन जाए तो इस्तेसहाब हाल वो दफा की दलील तो बन सकता है, इस्तेहकाक मीरास की दलील नहीं बन सकता कि इसका वारिस होना साबित हो जाए। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्ना बका अहु हय्यन फी ज़ालिकल वक्ती, इसलिए क्योंकि उस गायब आदमी का जिंदा बाकी रहना उस वक्त के अंदर बिस्तेसाबिल हाल, ये इस्तेसाबे हाल से है। वह हुआ ला यसलुहु हुज्जतन फिल इस्तेहकाकी, और इस्तेसाबे हाल जो है ये हुज्जत बनने की सलाहियत नहीं रखता मुस्तहिक होने में, ये माल का मुस्तहिक हो जाए, इसकी मिल्कियत साबित हो जाए, तो इस्तेसाबे हाल जो है वो इस्तेहकाक के लिए हुज्जत बनने की सलाहियत नहीं रखता। हां, दफा की सलाहियत वो रखता है, चुनांचे इसीलिए इस्तेसाबे हाल की वजह से इसको जिंदा शुमार किया जाएगा और कोई वारिस इसके माल का मालिक नहीं बनेगा, इसका माल इसी के लिए रोक कर रखा जाएगा। तो इस्तेसाबे हाल दफा की दलील बना, यानी इसका माल वारिसों की तरफ मुंतकिल नहीं हुआ इस्तेसाबे हाल की वजह से। बात समझ में आ गई। वकदालिक लौ उसिया लिल मफकूदी वमा तल मूसी, وكذلك لو اوصي للمفقود, और इसी तरह अगर उस गायब आदमी के लिए वसीयत की गई। याद रखो उलमा फरमाते हैं अलवसीयत उख्तुल मीरासी, अलवसीयत उख्तुल मीरासी, वसीयत मीरास की बहन है, यानी जैसे किसी आदमी के मरने के बाद उसकी मीरास जारी होती है, इसी तरह उसके मरने के बाद उसकी वसीयत नाफिज होती है। और जैसे किसी आदमी के मरने के बाद मीरास सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो जिंदा हैं, जो लोग मरने के वक्त जिंदा हैं वो वारिस बनेंगे, इसी तरह जिस आदमी के लिए वसीयत की है उसका भी मौत के वक्त जिंदा होना जरूरी है। अगर वो वसीयत करने वाले की जिंदगी में ही वो आदमी मर गया जिसके लिए वसीयत की थी, तो याद रखो वो वसीयत बातिल हो जाएगी। एक आदमी ने वसीयत की मेरे मरने के बाद जैद को 10 लाख रुपए दे देना, तो याद रखो जैद को ये 10 लाख रुपए इस आदमी के मरने के बाद मिलेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि जिस वक्त इस आदमी का इंतकाल हो जैद जिंदा होना चाहिए। अगर जैद उस आदमी की जिंदगी में ही मर गया तो उस आदमी की ये वसीयत बातिल है। तवज्जो है। तो अलवसीयत उख्तुल मीरासी, बात समझ में आ गई। तो जैसे ये शख्स जो गायब है, जैसे ये अपने रिश्तेदारों का वारिस नहीं बन सकता, इसी तरह अगर इसके लिए किसने वसीयत की है तो इसको वसीयत का माल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आदमी को जो जिंदा शुमार किया जाता है वो इस्तेसाबे हाल के जरिए किया जाता है, और इस्तेसाबे हाल वो दफा की दलील तो बन सकता है, माल के मुस्तहिक होने की दलील नहीं बन सकता। तो ये उस वसीयत के माल का मालिक नहीं बनेगा। हां, इसके लिए वो माल रोक कर रखा जाएगा कि शायद ये जिंदा हो और वापस आ जाए, तो वो वसीयत का माल इसके लिए रोक कर रखा जाएगा, अलबत्ता ये उसका मालिक नहीं बनेगा। तो बात समझ में आ गई भाई कि मफकूद अपने रिश्तेदारों में से किसी का वारिस नहीं बनेगा, यानी ये माले मीरास इसकी तरह मुंतकिल नहीं होगा, ये उसका मालिक शुमार नहीं होगा। हां, अलबत्ता इसके लिए माले वरासत रोक कर रखा जाएगा, और इसी तरह अगर इसके लिए किसी ने वसीयत की है तो ये उस वसीयत के माल का मालिक नहीं बनेगा। हां, इसके लिए वो माल रोक कर रखा जाएगा कि शायद ये जिंदा हो और वापस आ जाए, तो वो वसीयत का माल इसके लिए रोक कर रखा जाएगा, अलबत्ता ये उसका मालिक नहीं बनेगा। ये माना है वकदालिक लौ उसिया लिल मफकूदी, और इसी तरह है अगर वसीयत की गई उस गायब आदमी के लिए। वमा तल मूसी, और वो वसीयत करने वाले का इंतकाल हो गया। ثم الاصل انه لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به, यहां से साहिब हिदायत जाब्ता जिक्र फरमा रहे हैं। आपने पढ़ लिया कि मफकूद के रिश्तेदारों में से अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मफकूद उसका वारिस नहीं बनेगा। मैंने बतलाया वारिस न बनने का माना यह है कि वो उस माले मीरास का मालिक नहीं बनेगा। हां, अलबत्ता मफकूद के लिए माल रोक कर रखा जाएगा। अब कितना माल उसके लिए रोक कर रखा जाएगा और उसका क्या जाब्ता और तरीका है, तो साहिब हिदाया उसको बयान फरमाने लगे हैं। तवज्जो है। मफकूद के लिए उसके मूरिस का माल रोक कर रखा जाएगा, तो कितना माल रोक कर रखा जाएगा और उसका क्या तरीका है, अब साहिब हिदाया वो बयान फरमा रहे हैं। उससे पहले एक दो बातें समझ लीजिए भाई। आपने सिराजी के अंदर पढ़ा होगा कि एक है हजबे हिरमान और एक है हजबे नुकसान। एक वारिस की वजह से बाज़ औक़ात दूसरा वारिस पूरे तौर पर महरूम हो जाता है, इसको कहते हैं हजबे हिरमान। हजब का माना रोकना, तो हजबे हिरमान यानी दूसरे को इस तरीके से रोका कि उसे पूरे तौर पर महरूम कर दिया। और एक है हजबे नुकसान कि बाज़ औक़ात एक वारिस की वजह से दूसरे वारिस के हिस्से में कमी आ जाती है, इसको कहते हैं हजबे नुकसान भाई, कि दूसरे के हिस्से को रोका और इस तरीके पर कि उसमें कमी की है उसको पूरे तौर पर महरूम नहीं किया। मसलन देखो, आप जानते हैं कि वासिता के होते हुए जुल वासिता को नहीं मिलता। जैसे एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका बेटा भी जिंदा और बेटे का बेटा यानी पोता भी जिंदा है, तो अब जब बेटा मौजूद है तो पोते को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसको कहेंगे हजबे हिरमान कि बेटे ने पोते को बिल्कुल महरूम कर दिया, तो यह हजबे हिरमान है। और बाज़ औकात एक वारिस दूसरे वारिस के हिस्से में कमी कर देता है, जैसे मां को सुलुस मिलता है तीसरा हिस्सा, मरने वाले के माल में से मां को तीसरा हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है तो फिर मां को छठा हिस्सा मिलता है। तवज्जो है, तो देखो इस मरने वाले की औलाद ने मां का हिस्सा सुलुस से कम करके सुदुस कर दिया, इसको कहते हैं हजबे हिरमान। या जैसे बीवी है, बीवी को मरने वाले के माल में से चौथा हिस्सा मिलता है यानी रोबो, लेकिन अगर मरने वाले की औलाद भी मौजूद है तो फिर बीवी को आठवां हिस्सा मिलता है यानी सुमुन। तो देखो औलाद ने उस मरने वाले की बीवी के हिस्से को रोबो से कम करके सुमुन यानी आठवां हिस्सा कर दिया। मालूम हुआ यह हजब दो किस्म पर है, एक हजबे हिरमान है और एक हजबे नुकसान है। जिसके हिस्से में कमी हुई है वो भी महजूब है, जिसको पूरे तौर पर महरूम कर दिया गया वो भी महजूब है। लेकिन याद रखो आम तौर पर महजूब का लफ्ज उस वारिस के लिए इस्तेमाल होता है जो पूरे तौर पर मीरास से महरूम हो जाए। जैसे मैयत की औलाद ने मैयत की मां के हिस्से में कमी कर दी, मां महजूब तो है, यहां हजबे नुकसान है, लेकिन मां को महजूब नहीं कहेंगे क्योंकि उसको माल बहरहाल मिल तो रहा है भाई, अगरचे कम मिला है लेकिन माल मिला तो है। हां अलबत्ता पोते पोतियां जो हैं बेटे की वजह से मीरास से पूरे तौर पर महरूम हो गए तो इन पोते पोतियों को महजूब कहेंगे। हासिल कलाम ये कि हजब दो किस्म पर है, एक हजबे हिरमान है और एक हजबे नुकसान है। मालूम हुआ महजूब भी दो किस्म पर हो गया, एक महजूब है जिसके हिस्से में सिर्फ कमी आई है और एक महजूब वो है जो पूरे तौर पर मीरास से महरूम हो गया है। तो दोनों महजूब हैं, लेकिन महजूब का लफ्ज आम तौर पर उस वारिस के लिए बोला जाता है जो मीरास से पूरे तौर पर महरूम हो जाए। तो बेटे की वजह से पोते पोतियां पूरे तौर पर मीरास से महरूम हो गए तो इन पोते पोतियों को महजूब कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब यहां मसला जिक्र हो रहा था कि मफकूद के लिए कितना माल रोक कर रखा जाएगा, तो साहिबे हिदाया आपको जाब्ता बतलाएंगे कि अगर मफकूद की वजह से किसी वारिस के हिस्से में कमी आ रही है, मसलन अगर मफकूद को शुमार नहीं करते तो उस वारिस को ज्यादा हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर मफकूद को शुमार करें तो उस वारिस को कम हिस्सा मिलता है, तो इस किस्म के वारिस को कमतर हिस्सा दे देंगे। तवज्जो है, एक वारिस है अगर मफकूद को शुमार ना करें उसे ज्यादा माल मिलता है, और अगर मफकूद को शुमार करें तो उसे कम माल मिलता है, तो इस वारिस को कमतर माल दे दिया जाएगा और बाकी माल मफकूद के लिए रोक लिया जाएगा। और इसी तरह अगर बाज वारिस ऐसे हैं कि अगर मफकूद को शुमार न करें तो उनको माल मिलता है, और अगर मफकूद को शुमार करें तो फिर उनको माल नहीं मिलता, वो पूरे तौर पर महजूब और महरूम हो जाते हैं, तो इन वारिसों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, बाकी सारा माल मफकूद के लिए रोक लिया जाएगा कि शायद मफकूद जिंदा वापस आ जाए। तो हासिल कलाम क्या कि अगर मफकूद की वजह से किसी वारिस के हिस्से में कमी आती है तो उस वारिस को कम हिस्सा ही देंगे, यूं समझेंगे मफकूद मौजूद है। और इसी तरह वो वारिस कि जो मफकूद की वजह से पूरे तौर पर महरूम हो जाता है तो यहां भी यूं समझेंगे मफकूद मौजूद है और उस वारिस को कुछ भी नहीं देंगे, और यह सारा माल मफकूद के लिए रोक कर रखेंगे कि शायद मफकूद जिंदा वापस आ जाए। और अगर मफकूद जिंदा वापस न आया और काजी ने उसकी मौत का फैसला कर दिया तो फिर उसके बाद यह माल जो है उन वारिसों को दे दिया जाएगा जिनसे यह माल रोका गया था। तवज्जो है। तो देखिए भाई, कहते हैं सुमल असलो, फिर जाबता यह है, यानी मफकूद के लिए जो माल रोका जाएगा उसका जाबता बतला रहे हैं। कहते हैं सुमल असलु, फिर जाबता यह है कि अन्नहु लौकाना माल मफकूदी वारिसुन, कि अगर मफकूद के साथ कोई ऐसा वारिस है ला युहजब बिही, जो मफकूद की वजह से महजूब नहीं होता यानी पूरे तौर पर महरूम नहीं होता, वलाकिन्नहु यंतकिसु हक्कुहु बिही, लेकिन इसके वजह लेकिन मफकूद की वजह से उसका हक कम हो जाता है, तो युअता अकल्लन नसीबैनी, तो उस वारिस को दो हिस्सों में से कम तर दे दिया जाएगा। मफकूद की वजह से अगर वारिस के हिस्से में कमी आ रही है तो उस वारिस को कम हिस्सा दे दिया जाएगा, यूं समझेंगे मफकूद मौजूद है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, सुम्मल असलु, फिर जाबता यह है अन्नहु लौकान मअल मफकूदी वारिसुन ला युहजबु बिही, कि अगर मफकूद के साथ कोई ऐसा वारिस है जो मफकूद की वजह से महजूब नहीं होता यानी महरूम नहीं होता, वलाकिन्नहु यंतकिसु हक्कुहु बिही, लेकिन मफकूद की वजह से उसका हक कम हो जाता है, युअता अकल्लन नसीबैनी, तो इस वारिस को दो हिस्सों में से जो कम है वो दे दिया जाएगा, वयूकफुल बाकी, और बाकी का माल मौकूफ रखा जाएगा यानी उस मफकूद के लिए रोक लिया जाएगा, वह इनकाना माहू वारिसु युहजबु बिही, और अगर मफकूद के साथ कोई ऐसा वारिस है युहजबु बिही जो मफकूद की वजह से महजूब हो जाता है यानी पूरे तौर पर महरूम हो जाता है, तो ला युता असला, तो इसको सिरे से माल दिया ही नहीं जाएगा, इसको सिरे से माल दिया ही नहीं जाएगा। कहते हैं ला युअता असला, तो इसको कतई तौर पर माल दिया ही नहीं जाएगा। बयानुहु, बयान उसका यह है भाई। आगे साहिब हिदायत सूरत मसला के जरिए इसकी वजाहत करेंगे कि किस तरह मफकूद के लिए माल रोक कर रखा जाएगा। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि सूरत मसला यह है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है और उसकी दो बेटियां हैं और एक बेटा है, और ये बेटा मफकूद है, मरने वाले की दो बेटियां हैं और एक बेटा है और ये मफकूद है, इसी तरह इस मरने वाले का एक पोता भी है और एक पोती भी है, एक पोता भी है और एक पोती भी है, तो याद रखो ये जो बहने हैं अगर मरने वाले की सिर्फ एक बेटी हो कोई भाई वगैरह ना हो तो फिर उस बेटी को निसफ माल मिलता है, और अगर मरने वाले की दो या ज्यादा बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो फिर इन बेटियों को दो तिहाई माल मिलता है। मरने वाले की दो या ज्यादा बेटियां हैं बेटा कोई भी नहीं तो इन बेटियों को दो तिहाई माल मिलता है, जिसे फिर वो आपस में तकसीम कर लेती हैं बराबर बराबर भाई। तो अब यहां पर अगर इस मफकूद को शुमार न करें, यूं कहें इस मरने वाले की सिर्फ दो बेटियां हैं और पोता पोती हैं, तो बेटियों को सुलुसान मिलेगा, मफकूद को हमने शुमार नहीं किया, सिर्फ दो बेटियों को शुमार किया, तो इनको सुलुसान मिलना चाहिए। लेकिन अगर इनके साथ मफकूद को भी शुमार कर लें कि वो भी मौजूद है, तो फिर इस सूरत में याद रखो बेटे को बेटियों से दुगना माल मिलता है, यानी यूं कहो बेटे को दो बेटियों के बराबर माल मिलता है, तो दो बेटियां हैं उस मरने वाले की और ये मफकूद जो इसको हमने शुमार कर लिया ये भी दो बेटियों के बराबर, तो माल को इनमें निसफ निसफ तकसीम कर देंगे, यानी जो दो बेटियां हैं निसफ माल उनको मिल जाएगा और निसफ माल जो है इस मफकूद को मिल जाएगा कि ये भी दो बेटियों के बराबर है। मालूम हुआ अगर मफकूद को शुमार न करें तो इन दो बहनों को दो सुलुस माल मिलेगा, और अगर मफकूद को भी शुमार करें तो इन बहनों का हिस्सा कम हो जाएगा, अब इनको सिर्फ निसफ माल मिलेगा जी। और इसी तरह ये जो मैयत के पोता और पोती हैं, अगर मफकूद को भी शुमार करें कि मैयत का बेटा भी मौजूद है और पोते पोतियां भी मौजूद हैं, तो याद रखो जब बेटा मौजूद हो तो पोते पोतियों को कुछ भी नहीं मिलता, और अगर मफकूद को शुमार न करें कि मसलन मफकूद का इंतकाल हो चुका है और मरने वाले के पोता और पोती मौजूद हैं, तो फिर इस सूरत में इनको माल मिलता है भाई। ऊपर जो दो बेटियों से माल बचेगा वो बाकी माल ये पोता पोती आपस में तकसीम कर लेंगे। सूरत समझ में आ रही है? तो एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी दो बेटियां जिंदा हैं, एक बेटा उसका मफकूद है और उसके पोता और पोती भी मौजूद हैं। अगर हम उस मफकूद को शुमार करें तो बेटियों का हिस्सा कम हो रहा है, तो लिहाजा बेटियों को कमतर हिस्सा दे देंगे। यूं समझेंगे मफकूद मौजूद है, और मफकूद मौजूद हो तो पोते पोतियों को कुछ भी नहीं मिलता, लिहाजा पोते पोतियों को कुछ भी नहीं देंगे। यूं समझेंगे मफकूद मौजूद है, तो यह जितना माल बच गया है यह सारा रोक कर रख लिया जाएगा कि शायद मफकूद जिंदा वापस आ जाए। अगर वह जिंदा वापस आ गया तो यह माल उसको दे देंगे, और अगर वह जिंदा वापस ना आया और काजी ने उसकी मौत का फैसला कर दिया तो फिर यह माल जिनसे रोका गया था उनके हवाले कर दिया जाएगा। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं बयानहू, बयान इसका यह है, रजुलुम माता आनी बन्ना तैनी, कि एक आदमी इतनी दो बेटियों को छोड़कर मरा। मैंने आपको बतलाया था कि माता का सिला अन आ जाए, माता आनी बन्ना तैनी, तो इसका माना होता है छोड़कर मरना। अरबी में कहते हैं माता अन ज़ौजतिन, कि वो आदमी बीवी को छोड़कर मरा है, यानी बीवी जिंदा है। तो कहते हैं बयानहू, बयान उसका यह है, रजुलुन माता आनी बना तैनी, कि एक आदमी दो बेटियां छोड़कर मरा है, व बनी मफकूदिन, और एक मफकूद बेटा, व बनी बनिन, और एक बेटे का बेटा, व बिन तिबनिन, और एक बेटे की बेटी, यानी पोता पोती। मरने वाला दो बेटियां, एक मफकूद बेटा और पोता पोती छोड़कर मरा है भाई। तो कहते हैं रजुलुम माता आनी बनातैनी, एक आदमी दो बेटियां छोड़कर मरा है, व बनी मफकूदिन, और एक मफकूद बेटा, व बनी बनिन, और एक बेटे का बेटा यानी पोता, व बिनती बनिन, और एक बेटे की बेटी यानी पोती, वल मालूफी यदिल अजनबी, ये और उस मरने वाले का माल एक अजनबी के कब्जे में है। मसलन मरने वाले ने अपना माल किसी के पास बतौर अमानत के रखवाया हुआ था, या मरने वाले का माल किसी के ऊपर दैन है, उसने अदा करना है, तो अब ये माल इन वारिसों में तकसीम करना है। तो यूं समझेंगे मफकूद मौजूद है तो बेटियों को निसफ माल दे देंगे, जिसको वापस में तकसीम कर लेंगी, और पोते पोती को कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, और बाकी बचने वाला सारा माल उसी आदमी के पास मौकूफ रहेगा कि शायद वो मफकूद वापस आ जाए। तो कहते हैं वल मालूफी यदिल अजनबी, ये और माल जो है एक अजनबी आदमी के कब्जे में है, व तसादकू अला फकदिल इब्नी, और उन्होंने आपस में एक दूसरे की तस्दीक की बेटे के मफकूद होने पर। वो आदमी जिसके पास माल है और इसी तरह जो वारिस हैं, सब ने इत्तेफाक किया कि एक बेटा मफकूद है। तो कहते हैं वतसादकू अला फकदिल इब्नी, और उन्होंने बाहम एक दूसरे की तस्दीक की बेटे के मफकूद होने पर, वतलबतिल इब्नतान मीरासा, और उन दोनों बेटियों ने अपनी मीरास का मुतालबा किया, तो अतयान निस्फा, तो इन बेटियों को निसफ देंगे। मफकूद अगर ना होता तो इनको दो सुलुस देते, लेकिन यूं समझेंगे मफकूद मौजूद है, उसको शुमार करेंगे। तो कहते हैं तो अतयान इन निस्फा, तो इन बेटियों को निसफ माल दे देंगे, ले अन्नहु मुतयक कानून भी ही, क्योंकि निसफ माल तो यकीनी है भाई। अगर मफकूद को शुमार ना करें तो बेटियों को दो तिहाई माल मिलता है। मसलन देखो, फर्ज करें कुल माल 6 दिरहम है, फर्ज करें अगर मफकूद को शुमार करें तो बेटियों को 6 में से निसफ यानी 3 दिरहम मिलते हैं, और अगर मफकूद को शुमार न करें तो बेटियों को 2/3 यानी 6 में से 4 दिरहम मिलते हैं। 6 का निसफ कितना? 3, और 6 का 2 सुलुस कितना? 4। तो देखो इस 4 के अंदर भी 3 मौजूद है। मालूम है इन बेटियों को 3 दिरहम यानी निसफ मिलना तो यकीनी है, जायद के अंदर शक है। तो यह माना है, कहते हैं इन बेटियों को निसफ माल दे देंगे, ले अन्नहु मुतयक्कनुम बिही, इसलिए क्योंकि वो तो यकीनी है, व युकफुन निसफुल आखरु, और बाकी का निसफ जो है वो मौकूफ रखा जाएगा, वला युअता वुल्दुल इब्नी, और बेटे की औलाद को नहीं दिया जाएगा। बेटे की जो औलाद है यानी पोता पोती, उनको माल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब बेटा मौजूद हो तो पोता पोती को कुछ नहीं मिलता, तो बेटे को मौजूद शुमार किया जाएगा। तो कहते हैं वला युअता वुल्दुल इब्नी, और उस बेटे की जो औलाद है यानी पोता पोती जो है उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लिअन्नहुम युहजबून बिल मफकूदी, इसलिए क्योंकि वो मफकूद की वजह से महजूब हो जाते हैं। लौकान हय्यन, अगर वो जिंदा होता, अगर मफकूद जिंदा होता और मौजूद होता तो ये पोता पोती महजूब हो जाते, इनको कुछ भी ना मिलता। तो कहते हैं लिया नहुम युह जबू नबिल मफकूद इलाव का नहैया, इसलिए क्योंकि ये मफकूद की वजह से महजूब हो जाते, अगर वो जिंदा होता फला यस्तहकू नल मीरास अभी शक की, तो ये मीरास के मुस्तहक नहीं होंगे शक की वजह से, क्योंकि मफकूद तो गायब है, मालूम नहीं वो जिंदा है या जिंदा नहीं। अगर वो जिंदा है तो इनको कुछ ना मिलता, और अगर वो जिंदा नहीं है तो इनको माल मिल जाता, तो इनके मीरास के मुस्तहक होने में शक आ गया। ये माना है फला यस्तहिकून अल मीरास अबिशक की, तो लिहाजा ये जो बेटे की औलाद है यानी पोता पोती, ये मीरास के मुस्तहिक नहीं होंगे बिशक की, शक की वजह से। बात समझ में आ गई। और भाई यहां पर आया वल माल उफी यदिल अजनबी ये, कि ये माल अजनबी आदमी के कब्जे में था, ये माल अजनबी आदमी के कब्जे में था, तो दोनों बेटियों को निसफ दे देंगे और पोते पोती को कुछ भी नहीं देंगे, बाकी सारा माल उसी अजनबी के पास रहेगा, उसको मौकूफ रखा जाएगा कि शायद वह मफकूद जिंदा वापस आ जाए। तो ये जो अजनबी के हाथ में माल के होने की कैद लगाई, वजह यह है कि अगर यह सारा माल बेटियों के कब्जे में होता, एक आदमी का इंतकाल हो गया और उसका सारा माल बेटियों के कब्जे में है, तो फिर उनको भी बतला दिया जाता कि आपका हिस्सा निसफ है और पोते पोतियों को अभी कुछ भी नहीं देना, बाकी का माल रोक कर रखना है, लेकिन वो माल जो मफकूद के लिए रोका गया है वो उन्हीं बेटियों के पास रहने दिया जाता, उनसे लेकर किसी और आदमी को नहीं दिया जाएगा। तवज्जो है। तो लिहाजा इसलिए अजनबी की कैद लगाई कि अगर अजनबी के हाथ में है माल तो उसी के पास रहेगा और उससे लेकर बेटियों के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन अगर बेटियों के पास माल है तो फिर उस माल को लेकर किसी और के हवाले नहीं किया जाएगा भाई। और यह भी कैद लगाई वह तसादकू अला फकद लिबनी, कि उन्होंने आपस में एक दूसरे की तस्दीक कर दी बेटे के मफकूद होने पर। वो अजनबी जिसके कब्जे में माल है वो भी कहता है इस मरने वाले का एक बेटा मफकूद है, और जो वारिस हैं बेटियां वगैरह है जो हैं वो भी क्या कहते हैं कि उनका एक भाई मफकूद है। तो साहिब हिदाय ने आपस में एक दूसरे की तस्दीक की कैद भी लगाई, वजह ये कि अगर वो शख्स जिसके कब्जे में माल है वो इकरार कर लेता है कि मफकूद तो पहले से ही मर चुका है, कि अपने बाप के मरने से पहले ही मर चुका है, तो फिर इस सूरत के अंदर इस अजनबी को मजबूर किया जाएगा कि बेटियों को भी उनका पूरा हिस्सा दे दे, यानी दो सुलुस दे और बाकी का माल पोते पोती में तकसीम करे भाई, उसको अब माल रोकने की इजाजत नहीं होगी भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वला युनज़ाउ मिन यदिल अजनबी इल्ला इज़ा ज़हरत मिन्हु खियानतुन, भाई वो जो मरने वाले का माल था वो एक अजनबी आदमी के हाथ में है, तो क्या उस अजनबी से वो माल ले लिया जाएगा बाकी का माल जो मौकूफ रखा गया है? कहते हैं नहीं, वो माल उसी के पास रहेगा, इल्ला ये कि उस आदमी की खयानत जाहिर हो जाए कि वो माल के अंदर धोखा कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उस सूरत में उससे माल लेकर किसी और आदिल आदमी के पास रखवा दिया जाएगा। तो कहते हैं वला युनज़ाउ मिन यदिल अजनबी ये, और वो माल जो है जिसको मौकूफ रखा गया है उसको उस अजनबी के कब्जे से नहीं छीना जाएगा, इल्ला इज़ा ज़हरत मिन्हु खियानतुन, मगर यह कि जब उस आदमी की तरफ से खयानत जाहिर हो जाए। व नजीर हादल हमलु, और इसकी नजीर हमल है, इसकी नजीर हमल है। याद रखो अगर एक आदमी का इंतकाल होता है और उसकी बीवी हामिला है तो इस हमल के लिए भी वरासत रोक कर रखी जाएगी, यह हमल भी वारिस बनेगा भाई, उस मरने वाले के माल का हकदार होगा, तो कितना हिस्सा रोका जाएगा हमल के लिए? तो इमाम साहब की एक रिवायत है कि चार बेटों का हिस्सा रोक कर रखेंगे, क्योंकि बाज़ औकात एक ही हमल से चार बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से एक रिवायत है कि दो बेटों का हिस्सा रोक कर रखा जाएगा हमल के लिए, हो सकता है दो बेटे पैदा हो जाएं, जबकि फतवा इस पर है कि सिर्फ एक बेटे का हिस्सा रोका जाएगा। हां अगर ज्यादा बेटे हो गए तो फिर उसी कदर बाकी वारिसों से माल वापस लेकर ये जो हमल जिनकी पैदाइश हुई है इनका हिस्सा इनको दिया जाएगा। तो कहते हैं वह नजीर हाजल हमलो, और ये शख्स जो गायब है इसकी नजीर हमल है, जैसे मफकूद के लिए माल रोका जाता है, इसी तरह हमल के लिए भी माल रोका जाता है। तो कहते हैं व नजीर हादल हमलू, और इस मफकूद की नजीर जो है वह हमल है। वही नहू तू कफ लहू मीरास बनी वाहिदीन, इसलिए क्योंकि हमल के लिए भी एक बेटे की मीरास मौकूफ रखी जाती है। अलामा अलैहिल फतवा, बवजह उस कौल के जिस पर फतवा है। वलौ काना माहू वारिसुन आखरू, और अगर इस हमल के साथ कोई और वारिस भी है, इस हमल के साथ कोई और वारिस भी है। इनका नला यस्कुतु बिहालिन, अगर वो वारिस जो है किसी भी हाल में साकित नहीं होता, यानी हर हाल में उसको मीरास मिलेगी। वला यतगय्यरु बिल हमलि, और हमल की वजह से उसका हिस्सा बदलता भी नहीं है। तो युता कुल्ल नसीबिही, तो उसको सारा हिस्सा दे दिया जाएगा, क्योंकि हमल की वजह से उसके हिस्से पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, न वो महरूम हो रहा है न कमी आ रही है। हमल हो फिर भी इतना हिस्सा, हमल ना हो फिर भी इतना हिस्सा, तो उसको पूरा हिस्सा दे देंगे। तो यह माना है युअता कुल्ल नसीबिही, तो उसको पूरा हिस्सा दे देंगे। वह इनकान मिम्मन तस्कुतु बिल हमली, और अगर वो वारिस ऐसा है कि हमल की वजह से वो साकित हो सकता है, तो ला युअता, तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। वह इनकान मिम्मन यतगय्यरु बिही, और अगर ऐसा वारिस है कि उसका हिस्सा हमल की वजह से बदलता है, यानी इसका हिस्सा हमल की वजह से कम हो जाएगा, तो युअतल अकल्ला, तो उस वारिस को दो हिस्सों में से जो कमतर है वो दे दिया जाएगा। लित्तयक्कुन बिही, क्योंकि वो तो यकीनी है। कमा फिल मफकूदी, जैसे कि मफकूद के मसले में है। वकद शरहनाहु फी किफायतिल मुंतही, और तहकीक इसकी शरह की है हमने किफायतुल मुंतही में। भी अतम मिन हाजा, इससे ज्यादा ताम तरीके से। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि यह हिदाया माखूज है किफायतुल मुंतही से, और किफायतुल मुंतही वो इसी मतन की शरह है, अलबत्ता वो 80 जिल्दों पर मुश्तमिल थी। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इस मतन की जो बड़ी शरह है किफायतुल मुंतही, उसके अंदर हमने इसकी और ज्यादा वजाहत और ज्यादा शरह की है। भाई तो कहते हैं वकद शरहना हुफी किफायतिल मुंतही, और तहकीक किफायतुल मुंतही में हमने इसकी शरह की है। भी अतम मिन हाजा, इससे ज्यादा कामिल तरीके से। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।